राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय एक। अदोनिया का स्वयं राजा घोषित करना। राजा दाविद अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्हें ओढ़ाया अवश्य जाता था, मगर कपड़े उनके शरीर को गर्म नहीं रख पा रहे थे। इसलिए उनके सेवकों ने उन्हें सलाह दी, महाराज हमारे स्वामी के लिए एक जवान लड़की की खोज की जाए। वह राजा की सेवा करे और उनके सामने ही रहे, वही आपकी गोद में सोया करे कि महाराज हमारे स्वामी की देह गर्म रह सके। तब उन्होंने पूरे इसराइल में एक सुंदर लड़की को खोजना शुरू कर दिया। उन्हें शूनाम देश में ऐसी लड़की मिल गई जिसका नाम था अभिशाग। वे उसे राजा के सामने ले आए। यह जवान लड़की बहुत ही सुंदर थी। उसे राजा की सेविका बना दिया गया। वह उनकी सेवा करने में लग गई, मगर राजा ने उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाए। उसी समय हेगीत के पुत्र अदोनिया ने अपने आप को ऊंचा उठाते हुए यह घोषणा की, अगला राजा मैं हूं। उसने अपने लिए रथ और घुड़सवार भी तैयार कर लिए और अपने आगे आगे दौड़ने के लिए 50 सैनिक भी। उसके पिता ने उससे यह प्रश्न करते हुए कभी नहीं रोका, तुमने ऐसा क्यों किया है? अदोनिया एक सुंदर युवक था। उसका जन्म अबशालोम के ठीक बाद ही हुआ था। अदोनिया ने जाकर जेरुया के पुत्र योआब और पुरोहित अबियाथर से मिलकर बातचीत की। उन्होंने अदोनिया की तरफ होकर उसकी सहायता भी की, मगर पुरोहित सादोक, यहोयादा का पुत्र बेनाइया, भविष्यद्वक्ता नाथान, शीमेई, रेई और दाविद के वीर योद्धाओं ने अदोनिया को समर्थन नहीं दिया। अदोनिया ने एन रोगेल नामक स्थान पर जाकर जोहलेथ नामक चट्टान के पास भेड़ों, बैलों और हष्टपुष्ट पशुओं की बलि चढ़ाई। इस मौके पर उसने अपने सभी भाइयों, राजकुमारों और यहूदिया के राजकीय अधिकारियों को तो आमंत्रित किया था, मगर उसने इस मौके पर ना तो भविष्यद्वक्ता नाथान को, ना तो बेनाइया को, ना अपने भाई शलोमोन को और ना किसी वीर योद्धा को आमंत्रित किया। नाथान ने शलोमोन की माता बैतशेबा से कहा, क्या तुमने सुना नहीं कि एक गीत का पुत्र अदोनिया राजा बन गया है और दाविद हमारे स्वामी इससे अनजान है? इसलिए अब मेरी सलाह सुनो कि तुम अपना और अपने पुत्र शलोमोन का जीवन सुरक्षित रख सको। इसी समय राजा दाविद से जाकर कहो, महाराज मेरे स्वामी, क्या आपने अपनी दासी से यह शपथ ना ली थी, मेरे बाद तुम्हारा पुत्र शलोमोन ही राजा बनेगा, वही मेरे सिंहासन पर बैठेगा, तो फिर अदोनिया राजा कैसे बन बैठा? जब तुम राजा से बातचीत कर ही रही होगी, मैं वहां तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा और तुम्हारी बातों में हामी भरूंगा। तब बैतशेबा राजा के कमरे में गई। राजा बहुत ही बूढ़े हो चुके थे और शूनामी अभिशाक उनकी सेवा में लगी थी। बैतशेबा ने झुककर राजा को नमस्कार किया। राजा ने उससे पूछा, क्या चाहती हो तुम? बैतशेबा ने उन्हें उत्तर दिया, मेरे स्वामी, आपने अपनी सेविका से यहावे आपके परमेश्वर की शपथ ली थी, तुम्हारा पुत्र शलोमोन ही मेरे बाद राजा होगा और वह मेरे राज सिंहासन पर बैठेगा। अब देखिए, अदोनिया राजा बन बैठा है, जबकि महाराज मेरे स्वामी, आपको इसके बारे में पता ही नहीं है। अदोनिया ने बड़ी संख्या में बैलों, हष्टपुष्ट पशुओं और भेड़ों की बलि चढ़ाई है और उसने राजा के सभी पुत्रों को, पुरोहित अबियाथर और सेनापति योआब को भी बुलाया है, मगर आपके सेवक शलोमोन को इसके लिए नहीं बुलाया गया है। महाराज मेरे स्वामी, इस समय सारे इसराइल की नजरें आप पर लगी हैं कि आप यह घोषणा करें कि महाराज मेरे स्वामी के बाद कौन सिंहासन पर बैठेगा। नहीं तो यही होगा कि जैसे ही आप मेरे स्वामी हमेशा के लिए अपने पूर्वजों में जा मिलेंगे, मुझे और मेरे पुत्र शलोमोन को अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। बैतशेबा राजा से यह बातें कर ही रही थी कि भविष्यद्वक्ता नाथान वहां आ गए। उन्हें बताया गया, भविष्यद्वक्ता नाथान आए हैं। जब भविष्यद्वक्ता नाथान राजा के सामने पहुंचे, उन्होंने राजा को दंडवत किया। इसके बाद नाथान ने कहा, महाराज मेरे स्वामी, क्या यह आपकी घोषणा है? मेरे बाद अदोनिया राज करेगा, वही मेरे सिंहासन पर बैठेगा। क्योंकि आज उसने जाकर बैल, अष्टपुष्ट पशु और बड़ी मात्रा में भेड़ों की बलि चढ़ाई है। इस मौके पर उसने सभी राजकुमारों, सेनापतियों और पुरोहित अब्याथर को भी आमंत्रित किया है। ये सभी इस समय उसकी उपस्थिति में यह कहते हुए खुशी मना रहे हैं, अदोनिया सदा जीवित रहे। मगर अदोनिया ने मुझे, हाँ मुझे आपके सेवक को, पुरोहित सादोक को, यहोयादा के पुत्र बेनाइया और आपके सेवक शलोमोन को नहीं बुलाया है। क्या यह सब महाराज मेरे स्वामी द्वारा किया गया है और आपने अपने इन सेवकों को इस बात की सूचना देना सही ना समझा कि महाराज मेरे स्वामी के बाद उनके सिंहासन पर कौन बैठेगा? शलोमोन का सिंहासन पर बैठना। जब राजा दाविद ने यह सुना, उन्होंने आदेश दिया, मेरे सामने बैतशेबा को बुलाया जाए। बैतशेबा आकर राजा के सामने खड़ी हो गई। राजा ने यह शपथ लेते हुए कहा, जीवित यहावे की शपथ, जिन्होंने मुझे हर एक मुसीबत में से निकाला है, मैंने इज़राइल के परमेश्वर यहावे के सामने जो शपथ ली थी, तुम्हारा पुत्र शलोमोन मेरे बाद राजा होगा और वही मेरी जगह पर, मेरे सिंहासन पर बैठेगा। मैं आज ठीक यही पूरा करूंगा। यह सुन बैतशेबा ने झुककर राजा को दंडवत करते हुए कहा, राजा दाविद, मेरे स्वामी सदा जीवित रहे। राजा दाविद ने आदेश दिया, पुरोहित सादोक, भविष्यद्वक्ता नाथान और यहोयादा के पुत्र बेनाइया को मेरे सामने बुलाया जाए। जब वे राजा के सामने आए, राजा ने उन्हें आदेश दिया, मेरे पुत्र शलोमोन को मेरे नीच खच्चर पर चढ़ाकर उसे अपने स्वामी के सेवकों के साथ लेकर गीहोन चले जाओ। वहां पहुंचकर पुरोहित सादोक और भविष्यद्वक्ता नाथान इज़राइल का राजा होने के लिए शलोमोन को अभिषेक करें। इसके बाद नरसिंगे फूकने के साथ यह घोषणा की जाए, राजा शलोमोन सदा जीवित रहे। आप सभी इसके बाद शलोमोन के पीछे पीछे आए, तब वह यहां आकर मेरे राज सिंहासन पर बैठे कि वह मेरे बाद मेरी जगह पर राजा हो जाए, क्योंकि खुद मैंने उसे यहूदिया और इज़राइल पर राजा बनाया है। यहोयादा के पुत्र बेनाइया ने राजा से कहा, आमेन, महाराज मेरे स्वामी के परमेश्वर यहावे भी ऐसा ही कहे। जिस प्रकार यहावे महाराज मेरे स्वामी के साथ साथ रहे हैं, उसी प्रकार वह शलोमोन के साथ साथ बने रहे और उसके सिंहासन को मेरे स्वामी राजा दाविद के सिंहासन से भी अधिक बढ़ाए। तब पुरोहित सादोक, भविष्यद्वक्ता नाथान, यहोयादा का पुत्र बेनाइया और केरेथी और पेलेथी शलोमोन को राजा दाविद के निज खच्चर पर बैठाकर उसे गीहोन ले गए। वहां पुरोहित सादोक ने मिलन वाले तंबू से लाए हुए सींग के तेल से शलोमोन का अभिषेक किया। तब उन्होंने नरसिंगा फूंका और सभी ने एक आवाज में यह नारे लगाए, राजा शलोमोन सदा जीवित रहे। तब सारी भीड़ बड़े ही आनंद में बांसुरी बजाते हुए राजा के पीछे पीछे चलने लगी। इतनी तेज थी उनकी आवाज कि इससे धरती डोल उठी। यह आवाज अदोनिया और उसके सभी अतिथियों ने भी सुनी। इस समय वे अपना भोजन खत्म कर ही रहे थे, जैसे ही योआब ने नरसिंगे की आवाज सुनी, वह पूछने लगा, नगर में इस चिल्लाहट का कारण क्या है? वह यह पूछताछ कर ही रहा था कि पुरोहित अब्याथर का पुत्र योनातन वहां आ पहुंचा। अदोनिया ने उससे कहा, यहां आओ, तुम भले व्यक्ति हो, इसलिए भला समाचार ही लाए होगे। योनातन ने उसे उत्तर दिया, नहीं हमारे स्वामी, महाराज दाविद ने शलोमोन को राजा बना दिया है। राजा दाविद ने उसे पुरोहित सादोक, भविष्यद्वक्ता नाथान, यहोयादा के पुत्र बेनाइया और केरेथी और पेलेथी भी उसके साथ भेजे हैं। इसके अलावा उन्होंने शलोमोन को राजा दाविद के नीच खच्चर पर भी चढ़ा दिया है। पुरोहित सादोक और भविष्यद्वक्ता नाथान ने गीहोन में शलोमोन का राज अभिषेक कर दिया है। वे सभी वहां से बड़ी ही खुशी में लौटे हैं, इसलिए नगर में यह आनंद मनाने की आवाज सुनाई दे रही है। यही है वह चिल्लाहट जो आपने सुनी है। इन सब के अलावा अब शलोमोन राज सिंहासन पर बैठे हैं। वह सब होने के बाद राजा के सेवकों ने जाकर महाराज हमारे स्वामी को यह कहते हुए बधाइयां दी हैं परमेश्वर सलोमोन के नाम को आपके नाम से भी अधिक ऊंचा करें, उनके राज सिंहासन को आपके राज सिंहासन से भी अधिक बढ़ाए। यह सुन महाराज ने ही अपने पलंग पर ही दंडवत किया। साथ ही राजा ने भी यह भी कहा, धन्य है यहावे इज़राइल के परमेश्वर, जिन्होंने आज किसी को मेरे सिंहासन पर बैठने के लिए चुना है और उसे खुद मेरी आंखों ने देख लिया है। यह सुन अदोनिया के सभी अतिथि बहुत ही डर गए। वे सभी उसी समय उठकर अपने अपने रास्ते पर निकल गए। फिर अदोनिया मन ही मन सलोमोन से डरने लगा, इसलिए उसने तुरंत जाकर वेदी के सींग पकड़ लिए। सलोमोन को इस बात की खबर इस प्रकार दी गई, सुनिए सुनिए, अदोनिया महाराज से डरता है, इसलिए उसने जाकर यह कहते हुए वेदी के सींग थाम लिए हैं। आज महाराज सलोमोन यह शपथ ले कि वह अपने सेवक को तलवार से नहीं मारेंगे। सलोमोन ने उत्तर दिया, यदि वह अपने आप को एक अच्छा व्यक्ति साबित करे, उसका जरा सा भी नुकसान ना होगा, मगर यदि उसमें दुष्टता का अंश भी पाया गया तो उसकी मृत्यु तय है। राजा सलोमोन ने आदेश दिया कि उसे वेदी से लाकर उनके सामने पेश किया जाए। वह लाया गया और उसे राजा सलोमोन के सामने पेश किया गया। वह आया और राजा सलोमोन के सामने दंडवत हो गया। राजा सलोमोन ने उसे आदेश दिया, आप अपने घर को लौट जाइए। राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 2। सलोमोन के लिए दाविद के निर्देश। जब दाविद की मृत्यु का समय निकट आया, उन्होंने अपने पुत्र सलोमोन को ये आदेश दिए, संसार की रीति के अनुसार मैं जा रहा हूं, तुम्हें मजबूत होना होगा और तुम्हें पुरुषार्थ दिखाना होगा। परमेश्वर के नियमों के पालन की जो जवाबदारी यहावे तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें सौंपी है, उनके नियमों का पालन करने का, उनकी विधियों का पालन करने का, उनकी आज्ञा चित्तौनियों और गवाहियों का पालन करने का, जैसा कि मोशे की व्यवस्था में लिखा है कि तुम्हारा हर एक काम जिसमें तुम लगे होते हो, चाहे वह कैसा भी हो, करते हो, समृद्ध हो जाओ, जिससे यहावे मेरे बारे में ली गई अपनी इस शपथ को पूरा कर सके। यदि तुम्हारे पुत्रों का व्यवहार मेरे सामने उनके पूरे हृदय और प्राण से सच्चा रहेगा, इज़राइल के सिंहासन पर बैठने के लिए तुम्हें कभी कमी ना होगी। इसके अलावा तुम्हें यह भी मालूम है कि ज़ेरूया के पुत्र योआब ने मेरे साथ कैसा गलत व्यवहार किया था। उसने इज़राइल की सेना के दो सेनापतियों नेर के पुत्र अबनेर और येथेर के पुत्र अमासा की इस प्रकार हत्या की थी। उसने मेल के समय में भी युद्ध के समान लहू बहाया था। ऐसा करके उसने अपने कमरबंद को और अपने जूतों को लहू से भिगो दिया। अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करो और ध्यान रहे कि उसके लिए वह इस बुढ़ापे में पहुंचकर शांति से अधोलोक में प्रवेश ना कर सके। मगर गिलादवासी बारजिल्लई की संतान पर विशेष दया दिखाते रहना, ऐसा करना कि वे भोजन के लिए तुम्हारे साथ बैठा करें, क्योंकि जब मैं तुम्हारे भाई अबशालोम से छिपता हुआ भाग रहा था, उन्होंने मेरी बड़ी सहायता की थी। यह ना भूलना कि इस समय तुम्हें बहुरीम के रहने वाले बिन्यामीन वंशज गेरा के पुत्र शीमेई के बारे में भी निर्णय लेना है। जब मैं महानाइम की ओर बढ़ रहा था, उसने मुझे कड़े शाप दिए थे, मगर जब मैं लौट रहा था, वह मुझसे मिलने यरदन नदी के किनारे तक आया था। मैंने जीवित यहावे की शपथ लेकर उसे आश्वासन दिया, मेरी तलवार उस पर कभी ना उठेगी। अब उसे दंड देने में ढिलाई ना करना। तुम बुद्धिमान व्यक्ति हो, तुम्हें पता है कि सही क्या होगा। उसके बूढ़े शरीर को बिना लहू बहाए अधोलोक में उतरने ना देना। इसके बाद दाविद अपने पूर्वजों में जा मिले, उन्हें उन्हीं के नगर की कब्र में रख दिया गया। इज़राइल पर दाविद के शासन की अवधि 40 साल थी। उन्होंने हेब्रोन में 7 साल और यरूशलेम में 33 साल शासन किया। सलोमोन अपने पिता दाविद के राज सिंहासन पर बैठे, उनका शासन इस समय बहुत बढ़िया तरीके से दृढ़ हो चुका था। सलोमोन का सिंहासन स्थापित होता। एक दिन हेगीत का पुत्र अदोनिया सलोमोन की माता बैतशेबा से मिलने आया बैतशेबा ने उससे पूछा, सब कुशल तो है ना?
जी हाँ सब कुशल है, उसने उत्तर दिया।
उसने आगे कहना शुरू किया, मुझे आपसे एक विनती करनी है।
बैतशेबा ने उत्तर दिया, हाँ कहो।
तब उसने कहा, आपको तो इस बात का पता है ही कि वास्तव में यह राज्य मेरा था। पूरे इसराइल की उम्मीद मुझसे ही थी, फिर पासा पलट गया और राज्य मेरे भाई का हो गया, क्योंकि यह यहावे द्वारा उसी के लिए पहले से तय किया गया था। अब मैं आपसे सिर्फ एक विनती कर रहा हूँ, कृपया मना ना कीजिएगा।
बैतशेबा ने उससे कहा,
हाँ कहो।
अदोनिया ने कहना शुरू किया, आप कृपया राजा शलोमोन से विनती करें कि वह मुझे शूनामी अभिषाक से विवाह करने की अनुमति दे दे, वह आपका कहना नहीं टालेंगे।
ठीक है, बैतशेबा ने उत्तर दिया, तुम्हारी यह विनती मैं महाराज तक जरूर पहुंचा दूंगी। तब बैतशेबा अदोनिया के इस विषय को लेकर राजा शलोमोन के सामने गई। उन्हें देखकर राजा उठ खड़े हुए और उनसे मिलने के पहले झुककर उन्हें नमस्कार किया। फिर वह अपने सिंहासन पर बैठ गए। उन्होंने आदेश दिया कि एक आसन उनकी माता के लिए लाया जाए। बैतशेबा उनके दाईं ओर उस आसन पर बैठ गई। बैतशेबा ने अपनी बात कहनी शुरू की, मैं तुमसे एक छोटी सी विनती कर रही हूँ, कृपया मना ना करना।
मेरी माता, आप कहिए तो मैं मना नहीं करूँगा, राजा ने उन्हें आश्वासन दिया।
तब बैतशेबा ने आगे कहा, अपने भाई अदोनिया को शूनामी अभिषाक से विवाह करने की अनुमति दे दो।
राजा शलोमोन ने अपनी माता को उत्तर दिया, माँ, आप अदोनिया के लिए सिर्फ शूनामी अभिषाक की ही विनती क्यों कर रही हैं? आप तो उसके लिए पूरा राज्य ही मांग सकती थी, वह तो मेरा बड़ा भाई है। ऐसी ही विनती आप पुरोहित अब्याथर और जेरुया के पुत्र योआब के लिए भी कर सकती हैं।
तब राजा शलोमोन ने यहावे की शपथ लेते हुए कहा, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा ही बल्कि इससे भी कहीं अधिक करे, यदि अदोनिया अपनी इस बात का मूल्य अपने प्राणों से ना चुकाए, क्योंकि जीवित यहावे ने ही मुझे मेरे पिता दाविद के सिंहासन पर बैठाया है। उन्हीं ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मुझे राजवंश दिया है। यह तय है कि आज ही अदोनिया को प्राण दंड दिया जाएगा।
राजा शलोमोन ने यहोयादा के पुत्र बेनाहिया को यह जवाबदारी सौंपी और उसके वार से अदोनिया की मृत्यु हो गई। इसके बाद राजा ने पुरोहित अब्याथर से कहा, आप अनाथोत चले जाइए, जहां आपकी पैतृक संपत्ति है। सही तो यह था कि आपको मृत्यु दंड दिया जाता, मगर इस समय मैं आपकी हत्या नहीं करूंगा, क्योंकि आपने मेरे पिता दाविद के सामने प्रभु यहावे की वाचा के संदूक को उठाया था, साथ ही आप मेरे पिता के बुरे समय में उनके साथ बने रहे। यह कहते हुए शलोमोन ने अब्याथर को यहावे के पुरोहित के पद से हटा दिया, कि यहावे का वह कहा हुआ वचन पूरा हो जाए जो उन्होंने शिलो में एली के वंश के संबंध में कहा था। जब योआब को इसकी खबर मिली, वह दौड़कर यहावे के मिलन वाले तंबू में जा पहुंचा और उसने जाकर वेदी के सींग पकड़ लिए। जाहिर है कि योआब अदोनिया के पक्ष में था, हालांकि अब शालोम के पक्ष में नहीं। जब राजा शलोमोन को यह बताया गया, योआब यहावे के मिलन वाले तंबू को भाग गया है और वह इस समय वेदी पर है, तो शलोमोन ने यहोयादा के पुत्र बेनाहिया को आदेश दिया, जाओ उसे वहीं खत्म कर दो। बेनाहिया ने यहावे के मिलन वाले तंबू के पास जाकर योआब से कहा, यह महाराज का आदेश है, आप मिलन वाले तंबू से बाहर आइए। किंतु योआब ने उत्तर दिया, नहीं, मैं यहीं अपने प्राण दे दूंगा। बेनाहिया ने इसकी सूचना राजा को दे दी, योआब ऐसा कर रहे हैं और उन्होंने मुझे यह उत्तर दिया है।
राजा ने बेनाहिया को उत्तर दिया, वही करो जैसा वह चाह रहा है, उसे खत्म करो और उसका अंतिम संस्कार भी कर देना। यह करने के द्वारा तुम मेरे पिता के वंश और मुझ पर उस सारे बहाए गए लहू का दोष दूर कर दोगे जो योआब द्वारा बेकार ही बहाया गया था। यहावे ही उन सभी कुकर्मों को उसके सिर पर ला छोड़ेंगे, क्योंकि उसने बिना मेरे पिता के जाने अपने से कहीं अधिक भले और सुयोग्य व्यक्तियों की तलवार से हत्या की। नेर के पुत्र अबनेर की
जो इज़राइल की सेना के सेनापति थे, और येथेर के पुत्र अमासा की, जो यहूदिया की सेना के सेनापति थे। तब उन दोनों की हत्या का दोष लौटकर योआब और उनके वंशजों पर हमेशा के लिए आता रहेगा, मगर दाविद, उनके वंशजों, उनके परिवारों और सिंहासन पर यहावे के द्वारा दी गई शांति हमेशा बनी रहे। तब यहोयादा का पुत्र बेनाइयां भीतर गया और योआब पर वार कर उसका वध कर दिया और उसे बंजर भूमि के पास उसके घर पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। राजा ने यहोयादा के पुत्र बेनाइयां को योआब की जगह पर सेनापति और अब्यातर के स्थान पर सादोक को पुरोहित बना दिया। इसके बाद राजा ने शिमेई को बुलवाया और उसे आदेश दिया, यरूशलेम में अपने लिए घर बनाइए और उसी में रहिए। ध्यान रहे कि आप यहां से और कहीं ना जाए, क्योंकि जिस दिन आप बाहर निकलेंगे और किद्रोन घाटी पार करेंगे, यह समझ लीजिए कि उस दिन आपकी मृत्यु तय होगी और इसका दोष आपके ही सिर पर होगा। शिमेई ने राजा को उत्तर दिया, महाराज, मेरे स्वामी द्वारा दिए गए निर्देश सही ही है। जो कुछ महाराज मेरे स्वामी ने कहा है, आपका सेवक उसका पालन जरूर करेगा। तब शिमेई यरूशलेम में लंबे समय तक रहता रहा। 3 साल खत्म होते होते शिमेई के 2 सेवक भागकर गात के राजा माका के पुत्र आकीश के पास चले गए। शिमेई को यह सूचना दी गई, सुनिए, आपके सेवक इस समय गात में है। यह सुन शिमेई ने अपने गधे पर काठी कसी और गात के लिए निकल गया कि आकीश के यहां जाकर अपने सेवकों को खोज सके। शिमेई वहां से अपने सेवकों को लेकर यरूशलेम लौट आया। शलोमोन को इस बात की सूचना दे दी गई कि शिमेई यरूशलेम से गात गया था और अब वह लौट चुका है। यह सुनकर राजा शिमेई को बुलाने का आदेश दिया। राजा ने शिमेई से प्रश्न किया, क्या मैंने बड़ी गंभीरता से आपसे यहावे की शपथ लेकर यह चेतावनी ना दी थी, जिस दिन आप यरूशलेम से बाहर निकले, यह समझ लीजिए कि आपकी मृत्यु तय होगी, जिसके उत्तर में आपने ही कहा था, महाराज मेरे स्वामी द्वारा दिए गए निर्देश सही ही है। इतना होने पर भी आपने यहावे के सामने ली गई शपथ का सम्मान और मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं किया? राजा ने शिमेई से यह भी कहा, आपको उन सारे बुरे व्यवहारों और गलतियों का एहसास है जो आपने मेरे पिता दाविद के साथ की थी, इसलिए यहावे आपके द्वारा किए गए इन दुर्व्यवहारों को आपके ही ऊपर लौटा ले आएंगे। मगर राजा शलोमोन धन्य रहेंगे और दाविद का सिंहासन यहावे के सामने हमेशा के लिए बना रहेगा। राजा ने यहोयादा के पुत्र बेनाइया को आदेश दिया और उसने बाहर जाकर शिमाई पर ऐसा वार किया कि उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस प्रकार शलोमोन के हाथों में आया राज्य दृढ़ हो गया। राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 3। बुद्धि के लिए शलोमोन की प्रार्थना। शलोमोन ने मिस्र के राजा फरो के साथ वैवाहिक गठबंधन बनाया। उन्होंने फरो की पुत्री से विवाह कर लिया और उसे दाविद के नगर में ले आए। उन्होंने उसे यरूशलेम में तब तक रखा जब तक अपने भवन, यहावे के भवन और यरूशलेम की शहरपनाह बनाने का काम पूरा ना हो गया। लोग पूजा की जगहों पर अब भी बलि चढ़ाते थे, क्योंकि अब तक यहावे के लिए कोई भी भवन बनाया नहीं गया था। शलोमोन यहावे से प्रेम करते थे, हाँ, अपने पिता दाविद की विधियों का पालन भी करते थे। इसके अलावा वह पूजा की जगहों पर बलि चढ़ाते और धूप भी जलाते थे। एक बार राजा बलि चढ़ाने के लिए गिबियोन नगर गए। यह विशेष पूजा की जगह थी। शलोमोन हमेशा उस वेदी पर होम बलि के लिए 1,000 पशु चढ़ाते थे। गिबियोन नगर में ही यहावे शलोमोन पर सपने में दिखे। परमेश्वर ने उनसे कहा, मांगो जो तुम्हारी मनोकामना है। शलोमोन ने यहावे को उत्तर दिया, आपने अपने सेवक मेरे पिता दाविद पर बहुत प्रेम दिखाया है, क्योंकि वह आपके सामने सच्चाई, ईमानदारी और मन की सीधाई से चलते रहे। आपने उन पर अपना अपार प्रेम इस हद तक बनाए रखा है कि आज आपने उन्हें उनके सिंहासन पर बैठने के लिए एक पुत्र भी दिया है। यहावे मेरे परमेश्वर, अब आपने अपने सेवक को मेरे पिता दाविद की जगह पर राजा बना दिया है। यह होने पर भी सच यही है कि मैं सिर्फ एक कम उम्र का बालक ही हूँ। मुझे इसकी समझ ही नहीं कि किस परिस्थिति में कैसा फैसला लेना सही होता है। आपका सेवक आपके द्वारा चुनी गई प्रजा के बीच है, जो इतनी विशाल है कि जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती है, जिनका हिसाब रखना मुश्किल है। इसलिए प्रजा का न्याय करने के लिए अपने सेवक को ऐसा मन दे दीजिए कि मैं भले बुरे को परख सकूं, नहीं तो कौन है जो आपकी इतनी विशाल प्रजा का न्याय करके उसे चला सके। शलोमोन की इस प्रार्थना ने प्रभु को प्रसन्न कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया, इसलिए कि तुमने ना तो अपनी लंबी उम्र के लिए, ना धन दौलत के लिए और ना ही अपने शत्रुओं के प्राणों की विनती की है, बल्कि तुमने प्रार्थना की है कि तुम्हें न्याय के लिए सही विवेक मिल सके। देखो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हें बुद्धि और विवेक से भरा मन देता हूँ, ऐसा कि ना तो तुमसे पहले कोई ऐसा हुआ है और ना तुम्हारे बाद ऐसा कोई होगा। मैं तुम्हें वह भी दूंगा जिसकी तुमने प्रार्थना भी नहीं की, धन दौलत और महिमा। तुम्हारे पूरे जीवन भर में कोई भी राजा तुम्हारे सामने खड़ा ना हो सकेगा। यदि तुम मेरे मार्ग पर चलोगे, मेरी विधियों और आज्ञाओं का पालन करते रहो, जैसा तुम्हारे पिता दाविद करते रहे, मैं तुम्हें लंबी उम्र दूंगा। शलोमोन की नींद टूट गई। उन्हें लगा कि यह सिर्फ सपना ही था। वह यरूशलेम लौट गए और वहां प्रभु की वाचा के संदूक के सामने खड़े हो गए, और उन्होंने होमबलि और मेलबलि चढ़ाई और अपने सभी सेवकों के लिए एक भोज दिया। शलोमोन की बुद्धि। एक दिन शलोमोन की सभा में दो वैश्याएं आ खड़ी हुई। उनमें से एक ने विनती की, मेरे प्रभु, हम दोनों एक ही घर में रहती हैं। जब यह घर पर ही थी, मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देने के तीसरे दिन इस स्त्री ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। हम दोनों साथ साथ ही रह रही थीं। घर में हम दोनों के अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति ना था, घर में सिर्फ हम दोनों ही थी। रात में इस स्त्री के पुत्र की मृत्यु हो गई, क्योंकि बच्चा इसके नीचे दब गया था। रात के बीच में जब मैं सो रही थी, इसने उठकर मेरे पास से मेरे पुत्र को लेकर अपने पास सुला लिया और अपने मरे हुए पुत्र को मेरे पास लिटा दिया। जब सुबह उठकर मैंने अपने पुत्र को दूध पिलाना चाहा, तो मैंने पाया कि वह मरा हुआ था। मगर जब मैंने सुबह उसे ध्यान से देखा, तो यह मुझे साफ मालूम हुआ कि वह मेरा पुत्र था ही नहीं, जिसे मैंने जन्म दिया था। इस पर दूसरी स्त्री बोल उठी, नहीं, यह जिंदा बच्चा ही मेरा पुत्र है, तुम्हारा पुत्र यह मरा हुआ बच्चा है। मगर पहली स्त्री ने कहा, नहीं, मरा हुआ बच्चा तुम्हारा ही पुत्र है, जिंदा बच्चा मेरा पुत्र है। यह सब राजा के सामने हो रहा था। तब राजा ने कहा, एक कहती है, जो जिंदा है वह मेरा पुत्र है, जो मरा है वह तुम्हारा पुत्र है, और दूसरी स्त्री दावा कर रही है, नहीं, मरा हुआ पुत्र तुम्हारा है, जिंदा मेरा। राजा ने आदेश दिया, मेरे लिए एक तलवार लेकर आओ। सो राजा के लिए एक तलवार लाई गई। राजा ने उन्हें आदेश दिया, जीवित बच्चे को दो भागों में काट दिया जाए और दोनों स्त्रियों को आधा आधा भाग दे दिया जाए। तब वह स्त्री, जिसका बच्चा वास्तव में जिंदा था, राजा से विनती करने लगी, क्योंकि वह अपने पुत्र के विषय में बहुत ही दुखी हो गई थी, मेरे प्रभु, दे दीजिए यह जिंदा बच्चा इसे, इसकी हत्या बिल्कुल ना कीजिए। मगर दूसरी स्त्री ने कहा, ना बच्चा तुम्हारा होगा ना मेरा, कर दो इसे दो भागों में आधा। यह सुनते ही राजा ने आदेश दिया, इस बच्चे की हत्या बिल्कुल ना की जाए, जिंदा बच्चा इस पहली स्त्री को दे दो, इस बच्चे की माता यही है। तब सारे इसराइल ने इस निर्णय के बारे में सुना कि राजा ने कैसा निर्णय दिया है। सबके मन में राजा का भय छा गया, क्योंकि वे यह साफ देख रहे थे कि न्याय करने के लिए राजा में परमेश्वर की बुद्धि थी। राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 4। शलोमोन के प्रशासन अधिकारी। राजा शलोमोन सारे इसराइल देश के शासक थे। उनके द्वारा चुने गए प्रमुख अधिकारियों का ब्यौरा इस तरह है। सादोक के पुत्र अजरिया मुख्य पुरोहित थे, शीशा के पुत्र एलीहोरेफ और अहिया सचिव, अहिलूद का पुत्र यहोशफात लेखापाल, यहोयादा का पुत्र बेनाया पूरी सेना का सेनापति था, सादोक और अबियाथर पुरोहित थे। नाथान का पुत्र अजरिया क्षेत्रीय राज्यपालों का अधिकारी बनाया गया। नाथान के अन्य पुत्र जाबूद जो पुरोहित भी थे, राजा के सलाहकार भी, अहिशाहार राज परिवार से संबंधित विषयों का अधिकारी था। अब्दा का पुत्र अदोनीराम बंधुआ मजदूरों का अधिकारी था। शलोमोन ने सारे इसराइल राज्य के लिए 12 अधिकारियों को चुन रखा था। इनकी जवाबदारी थी राजा और उनके पूरे परिवार के लिए भोजन की व्यवस्था बनाए रखें। हर एक अधिकारी साल के एक महीने के लिए प्रबंध का जिम्मेदार था। उनके नामों की सूची इस प्रकार है। एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश में बेनहूर, माकाज नगर में बेन देकर, शालबीम बेत शेमेश और एलोन बेत हानान, अरुबोत में बेन हैसेत, उनका शासन सोखो और पूरे हेफेर क्षेत्र पर भी था। बेन अबीनादाब पूरा नाफात दौर का प्रशासक था। उसकी पत्नी का नाम था ताफात जो शलोमोन की पुत्री थी। अहिलूद का पुत्र बाना तानाखोर मगीदों में और येज़रील घाटी के जारेथान के पास संपूर्ण बेत शान तक और आबेल मेहोलाम से लेकर योकम्याम, बेन गीबर रामोत गिलाद में चुना गया शासक था। उनके अधिकार में मनशशे के पुत्र याइर के गांव भी थे जो गिलाद क्षेत्र में स्थित है। उसके अधिकार में अर्गोब का क्षेत्र भी था जो बाशान में स्थित है। शहरपना और कांसे की छड़ों से सुरक्षित बना दिए गए 60 विशाल नगर। महानाइम नगर में इद्धो का पुत्र अहिनादाब शासक था। नफ्ताली में अहिमाज शासक था। उसने शलोमोन की पुत्री बसेमात से विवाह किया था। हूशाय का पुत्र बाना आशेर और आलोत में चुना गया था। इसाखार में पारुआ का पुत्र यहोशाफात, बिन्यामीन में एला का पुत्र शीमेई, गिलाद प्रदेश में उरी का पुत्र गीबार जो अमोरियों के राजा सीहोन और इसके अलावा यहूदिया राज्य के लिए एक राज्यपाल भी चुना गया था। शलोमोन का वैभव। यहूदिया और इसराइल में जनसंख्या समुद्र के किनारे की रेत के समान अनगिनत थी। प्रजा सुख समृद्धि में रह रही थी। शलोमोन की प्रभुता फरात नदी के पश्चिम की ओर से लेकर फिलिस्तीनियों के देश तक और मिस्र देश की सीमाओं तक सारे राज्यों पर हो गई थी। ये सभी शलोमोन के पूरे जीवन भर उन्हें भेंट भेजते रहे और उनकी सेवा करते रहे। शलोमोन के राज परिवार में प्रतिदिन के भोजन में 5,000 किलो मैदा, 10,000 किलो आटा, 10 हष्ट पुष्ट बछड़ों का मांस, मैदानों में पाले गए 20 बैल, 100 भेड़ों और इन सब के अलावा हिरन, चिंकारे और यखमूरों और हष्ट पुष्ट पक्षियों का मांस हुआ करता था। फरात नदी के पश्चिम में हर जगह शलोमोन की प्रभुता थी। तिफ्सा से अज्जा तक फरात नदी के पश्चिम के सभी राजाओं पर पूरे राज्य में चारों ओर शांति बनी हुई थी। यहूदिया और इसराइल पूरी तरह सुरक्षित थे। दान से बेशरबा तक हर एक व्यक्ति शलोमोन के पूरे जीवन भर में अपने अंगूरों और अंजीरों को खाते थे। शलोमोन की घुड़शाला में 40,000 घोड़े उनके रथों के इस्तेमाल के लिए थे, जिनके लिए 12,000 घुड़सवार चुने गए थे। ठहराए गए महीने के नियुक्त अधिकारी राजा शलोमोन के लिए जरूरी चीजों का प्रबंध करते थे कि शलोमोन और उनके मेहमानों के सामने भोजन परोसा जाता रहे, कमी किसी चीज की नहीं होती थी। घोड़ों और तेज चलने वाले घोड़ों के भोजन के लिए जौ और चारे का इंतजाम करना भी इन्हीं की जवाबदारी थी। वे जरूरत के अनुसार ये सब पूरा कर देते थे। शलोमोन की बुद्धि और ज्ञान। परमेश्वर ने शलोमोन को बुद्धि, बहुत ही गहरा विवेक और असाधारण समझ दी थी। शलोमोन की बुद्धि पूर्वी देश के ज्ञानियों और मिस्र देश के विद्वानों की बुद्धि से कहीं बढ़कर थी। कारण यही था कि वह सभी मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान थे। एज्रावासी एथेन से, एमान से, और माहौल की संतान दारदा से भी अधिक आसपास के सभी देशों में उनकी ख्याति फैल चुकी थी। शलोमोन ने 3,000 नीति वचन कहे और उनके द्वारा 1,005 गीत भी लिखे गए थे। शलोमोन ने पेड़ों के बारे में अपनी बुद्धि व्यक्त की, लबानोन के देवदार वृक्ष से लेकर दीवार में से उगने वाले जूफा के पौधे के बारे में भी। उन्होंने पशुओं, पक्षियों, रेंगते जंतुओं और मछलियों के बारे में भी अपना ज्ञान प्रकट किया। शलोमोन की ज्ञान की बातें सुनने सभी देशों के लोग आया करते थे। इसके अलावा पृथ्वी के सभी राजाओं के लोग भी उनकी बुद्धि के बारे में सुनकर शलोमोन की बुद्धि से भरे वचन सुनने आते रहते थे। राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 5। मंदिर निर्माण की तैयारी। जब सोर देश के राजा हीराम को यह पता चला कि शलोमोन के उनके पिता दाविद के स्थान पर राजा बनाया गया है, उन्होंने शलोमोन के पास अपने राजदूतों को भेजे। दाविद हमेशा से ही हीराम के प्रिय रहे थे। शलोमोन ने राजा हीराम के लिए यह संदेश भेजा, आपको यह तो पता ही है कि विभिन्न युद्धों में लगे रहने के कारण मेरे पिता दाविद, जब तक सभी शत्रु उनके अधीन ना हो गए, तब तक अपने परमेश्वर यहावे की महिमा के लिए भवन बनाने में असमर्थ ही थे। मगर अब यहावे मेरे परमेश्वर ने मुझे हर तरफ से शांति दी है। अब ना कोई मेरा शत्रु है और ना ही मुझे किसी ओर से किसी जोखिम की कोई आशंका है। इसलिए जैसा कि यहावे ने मेरे पिता दाविद से कहा, तुम्हारा पुत्र जिसे मैं तुम्हारे सिंहासन पर बैठाऊंगा वही होगा जो मेरी महिमा के लिए भवन बनवाएगा। मेरी इच्छा है कि मैं यहावे मेरे परमेश्वर की महिमा के लिए भवन बनवाऊं। इसलिए आप अपने सेवक को आदेश दे कि वे मेरे लिए लबानोन से देवदार के पेड़ काटे। इन सेवकों के साथ मेरे सेवक भी होंगे और मैं आपके इन सेवकों को आपके द्वारा तय किया गया वेतन देता जाऊंगा, क्योंकि यह तो आपको मालूम ही है कि हमारे बीच ऐसा कोई नहीं है जिसे सीदोनियों के बराबर लकड़ी का काम आता हो। शलोमोन के ये वचन सुन हीराम बहुत ही खुश होकर कह उठा, आज धन्य है यहावे जिन्होंने इस बड़े देश पर शासन के लिए दाविद को एक बुद्धिमान पुत्र दिया है। तब हीराम ने शलोमोन को यह आदेश भेजा, आपके द्वारा भेजा गया संदेश मैंने सुन लिया है। देवदार और सनोवर की लकड़ी से संबंधित आपके द्वारा कहे गए सब कुछ करने के लिए मैं तैयार हूँ। मेरे सेवक लकड़ी लबानोन से भूमध्य सागर तक पहुँचा देंगे। मैं उनके बेड़े बना दूंगा कि वे समुद्र के मार्ग से आपके द्वारा ठहराए गए स्थान तक भेजे जा सके। वहां ये बेड़े खोल दिए जाएंगे, वहां से आप इन्हें उठा सकेंगे। आपको करना यह होगा, आप मेरे परिवार के लिए भोजन देकर मेरी भी इच्छा पूरी कर दीजिए। शलोमोन ने देवदार और सनोवर की जितनी लकड़ी चाही उतना हीराम ने दे दी। दूसरी ओर शलोमोन ने हीराम को 3,600 टन गेहूं और 4,40,000 लीटर शुद्ध जैतून का तेल भेज दिया। शलोमोन यह हर साल करते रहे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार यहावे ने शलोमोन को बुद्धि से भर दिया। शलोमोन और हीराम के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध थे। दोनों ने आपस में वाचा बांध ली थी। राजा शलोमोन ने सारे इज़राइल देश से इस काम के लिए बेगारी पर पुरुष लगाए, जिनकी कुल संख्या 30,000 हो गई। इनमें से वह 10,000 को पूरे साल में बारी बारी से हर महीने लबानोन भेज दिया करते थे। ये कर्मचारी एक महीने लबानोन में और 2 महीने अपने घर में रहते थे। अदोनीराम इन सभी कर्मचारियों के ऊपर अधिकारी थे। शलोमोन ने पहाड़ी क्षेत्र में 70,000 बोझा ढोने वाले और 80,000 पत्थर का काम करने वाले चुने थे। इन सब के अलावा पूरे काम को देखने के लिए 3,300 अधिकारी भी चुने गए थे कि वे सारी योजना और कर्मचारियों की गतिविधि पर नजर रख सके। राजा के आदेश पर उन्होंने बड़े बड़े कीमती पत्थर खोद निकाले कि इन्हें तराश कर भवन की नींव के लिए इस्तेमाल किया जा सके। इस प्रकार शलोमोन के कर्मचारियों ने हीराम के कर्मचारियों और गिबलियों ने मिलकर भवन बनाने के लिए लकड़ी और पत्थर तैयार किए। राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 6। मंदिर का निर्माण। यह उस समय की बात है जब इसराइलियों को मिस्र देश से निकाले हुए 480 साल हो चुके थे और इसराइल पर शलोमोन के शासन के 4 साल। शलोमोन ने साल के जीव नामक दूसरे महीने में यहावे के लिए भवन बनाना शुरू किया। राजा शलोमोन ने यह जो भवन यहावे के लिए बनाया उसकी लंबाई 27 मीटर और चौड़ाई 9 मीटर, ऊंचाई 14 मीटर थी। भवन के बीच के द्वार मंडप की लंबाई भी 9 मीटर थी जितनी भवन की चौड़ाई थी। भवन के सामने इसकी गहराई 4.5 मीटर थी। शलोमोन ने भवन की खिड़कियां आकर्षक जालीदार बनाई थी। भवन की बाहरी दीवारों के चारों ओर शलोमोन ने अनेक कमरों का परिसर बनाया, दोनों ओर पीछे भी। सबसे नीचे का तल 2.25 मीटर चौड़ा था, बीच वाला तल 2 मीटर 70 सेंटीमीटर और तीसरा 3 मीटर 15 सेंटीमीटर चौड़ा। उन्होंने भवन की बाहरी दीवार कुर्सीदार बना दिए थे कि बोझ उठाती बल्लियों को मूल भवन के भीतर तक ना पहुंचना पड़े। भवन के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थरों को वहीं तैयार कर लिया गया था जहां से उन्हें निकाला जा रहा था। फल स्वरूप जब नया भवन बनाया जा रहा था वहां ना तो घन की, ना हथौड़ी की और ना किसी भी लोहे के औजार की आवाज सुनाई दी। बीच वाले तल का प्रवेश भवन के दक्षिण ओर था। जब किसी को तीसरे तल को जाना होता था वह सीढ़ियों से चढ़कर बीच वाले तल पर पहुंचता था, फिर वहां से तीसरे तल को। इस प्रकार शलोमोन ने भवन बनाना समाप्त किया। भवन की छत उन्होंने देवदार की बल्लियों और पटरियों से बनाई। उन्होंने पूरे भवन के आसपास छज्जे बनाए जिसकी ऊंचाई 2.25 मीटर थी। इन सभी को मूल भवन के देवदार से जकड़ दिया गया था। यह सब हो जाने पर शलोमोन को यहावे का यह संदेश भेजा गया, तुम जिस भवन को बना रहे हो उसके संबंध में यदि तुम मेरी विधियों का पालन करते रहोगे और मेरी आज्ञाओं को पूरा मानोगे और मेरे आदेशों का पालन करोगे तब मैं तुम्हारे साथ अपनी वह प्रतिज्ञा पूरी करूंगा जो मैंने तुम्हारे पिता दाविद से की थी। मैं इसराइल वंशजों के बीच रहूंगा और उन्हें छोड़ ना दूंगा। शलोमोन ने भवन बनाना समाप्त किया, फिर उसने भवन की दीवारों के अंदर से देवदार की पट्टियां लगवा दी। उन्होंने भवन की जमीन से लेकर भवन की छत तक दीवारों का अंदरूनी भाग देवदार लकड़ी से ढकवा दिया। इसके बाद उन्होंने भवन का तल सनोवर की लकड़ी से ढकवा दिया। शलोमोन ने भवन की पीछे की दीवार से 9 मीटर भीतर की ओर एक दीवार बनवाई। यह जमीन से छत तक देवदार की बनी हुई थी। इससे एक अंदर का कमरा बन गया, यही परम पवित्र स्थान था। इसके सामने बीच वाला स्थान 18 मीटर लंबा था। भवन की दीवारों का अंदरूनी भाग देवदार की लकड़ी से ढका था जिस पर कलियां और खिले हुए फूल खुद हुए थे। सभी कुछ देवदार से ढका था, पत्थर कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ता था। तब उन्होंने अंदरूनी पवित्र स्थान बनवाया। यह भवन के भीतर था कि इसमें यहावे की वाचा का संदूक प्रतिष्ठित किया जा सके। अंदरूनी कमरे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई भी 6 मीटर ही थी। इसे शुद्ध कुंदन से मढ़ दिया गया था। उन्होंने देवदार से बनी हुई वेदी को भी मढ़ दिया। शलोमोन ने भवन के भीतरी भाग को शुद्ध कुंदन से मढ़वा दिया। तब उन्होंने अंदरूनी पवित्र स्थान के सामने सोने की सांकलें खिंचवा दी। इसे भी उन्होंने सोने से मढ़वा दिया। पूरे भवन को उन्होंने सोने से मढ़वा दिया। इस प्रकार पूरे भवन का काम पूरा हुआ। इसके अलावा उन्होंने अंदरूनी पवित्र स्थान की पूरी वेदी को सोने से मढ़वा दिया। उन्होंने जैतून की लकड़ी से 2 करूब बनवाए। हर एक की ऊंचाई 4.5-4.5 मीटर थी। करूब का एक पंख 2.25 मीटर था और दूसरा पंख भी 2.25 मीटर का। पहले पंख के छोर से दूसरे पंख के छोर तक लंबाई 4.5 मीटर थी। दूसरा करूब भी 4.5 मीटर ऊंचा था। दोनों ही करूबों की नाप बराबर थी। दोनों करूबों की ऊंचाई 4.5 मीटर थी। शलोमोन ने करूबों को अंदरूनी कमरे के बीच में स्थापित कर दिया। करूबों के पंख फैले हुए थे, जिससे पहले करूब का एक पंख एक दीवार को छू रहा था तो दूसरे का एक पंख दूसरी दीवार को। इससे भवन के बीच में उनके पंख एक दूसरे को छू रहे थे। शलोमोन ने करूबों को भी सोने से मढ़वा दिया था। इसके बाद शलोमोन ने भवन की दीवारों के भीतर और बाहर और बाहरी पवित्र स्थान पर करूब, खजूर के पेड़ और खिले हुए फूलों की आकृतियां खुदवा दी। भवन का फर्श उन्होंने भीतरी और बाहरी पवित्र स्थान में सोने से मढ़वा दिया। अंदरूनी पवित्र स्थान में प्रवेश के लिए शलोमोन ने जैतून के पेड़ की लकड़ी के दरवाजे बनवाए। इनकी चौखट 5 कोण की थी। उन्होंने जैतून वृक्ष की लकड़ी के 2 दरवाजे बनवाए। इन पर उन्होंने करूबों, खजूर के पेड़ों और खिले हुए फूलों की आकृति खुदवाई और फिर इन्हें सोने से मढ़वा दिया। उन्होंने करूबों और खजूर के पेड़ों पर सोने का पत्रक मढ़वा दिया। उन्होंने बीच वाले स्थान में प्रवेश के लिए जैतून की लकड़ी के चौकोर चौखट और दरवाजे उन्होंने सनोवर की लकड़ी के बनवाए। हर एक दरवाजे के 2-2 पल्ले थे जो मोड़ने पर दोहरे हो जाते थे। इन पर शलोमोन ने करूब, खजूर के पेड़ और खिले हुए पेड़ों की आकृतियां खुदवाई। इन सभी पर उन्होंने एक बराबर सोने का पत्रक मढ़वा दिया। भीतरी कमरा उन्होंने कांटे सवारे गए पत्थरों की 3 पंक्तियों और देवदार की बल्लियों की 1 सतह से बनवाया। 4थे साल में यहावे के भवन की नींव रखी गई थी। यह जीव नाम का महीना था। 11वें साल में बूल महीने में, जो वास्तव में 8वां महीना है, हर तरह से भवन बनने का काम पूरा हो गया था। यह सब हर रीति से योजना के अनुसार ही हुआ था, यानी भवन बनाने के काम में 7 साल लग गए थे।
राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 7। शलोमोन का महल और अन्य निर्माण। इसी समय शलोमोन अपना महल भी बनवा रहे थे, जिसको बनने में 13 साल लग गए। उन्होंने लबानोन वन महल जो बनवाया, यह 45 मीटर लंबा, 22.5 मीटर चौड़ा और 13.5 मीटर ऊंचा था। इसमें देवदार के मीनारों की 4 पंक्तियां थीं, जिन पर देवदार ही की कड़ियां रखी थीं। कमरों की छत देवदार पटरियों से ढकी थी, जो 45 मीनारों पर थीं, हर एक पंक्ति में 15। खिड़कियों की चौखटें 3 पंक्तियों में थीं और खिड़कियां आमने सामने 3 पंक्तियों में थीं। खिड़कियों और दरवाजों के चौखट चौकोर थे और खिड़कियां 3 पंक्तियों में आमने सामने थी। शलोमोन ने 22.5 मीटर लंबे और 13.5 मीटर चौड़े एक कमरे का निर्माण किया। इस कमरे के सामने मीनारों पर रखा छज्जा बनाया गया, एक बरामदा। फिर उन्होंने सिंहासन का कमरा भी बनाया, जहां से वह न्याय करने पर थे। इसे न्याय कक्ष भी कहा गया। इसे भी जमीन से छतों तक देवदार की पटरियों से ढक दिया। उनका अपना घर, जहां से वह न्याय करने पर थे, इस कमरे के पीछे बनाया गया। यह भी इसी प्रकार की कलाकृति के अनुसार बनाया गया। शलोमोन ने फरो की पुत्री अपनी विवाहित पत्नी के लिए भी इसी महल के समान महल बनवाया। ये सभी कीमती पत्थरों से बनाए गए थे, जिन्हें सावधानी पूर्वक माप के अनुसार किया गया था। अंदरूनी हिस्सा, बाहरी हिस्सा, नींव से लेकर छत तक, बड़े आंगन तक, नींव के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थर बहुत बड़े बड़े थे, जिनकी लंबाई 4.5 मीटर और चौड़ाई 3.5 मीटर थी। ये सभी पत्थर कीमती श्रेणी के थे। इनके ऊपर कीमती पत्थर और देवदार के खंभे भी थे। बड़े आंगन में चारों ओर काटी गई चट्टानों की 3 पंक्तियां थीं। उसके बाद देवदार की छतों की 1 पंक्ति, ठीक ऐसी ही संरचना यहावे के भवन के भीतरी आंगन और भवन की बीच वाली ड्योढ़ी की थी। यहावे के भवन की सजावट। राजा शलोमोन ने दूत भेजकर सोर देश से हूराम को बुलवा लिया। हूराम विधवा का पुत्र था, जो नफ्ताली की वंशज थी। हूराम का पिता सोर देश का ही वासी था। वह कांसे की धातु का शिल्पी था।
उसमें ऐसी बुद्धि और कौशल था कि वह कांसे से किसी भी प्रकार का काम कर सकता था। उसने आकर राजा शलोमोन का सारा काम भार अपने हाथ में ले लिया। उसने कांसे के दो खंभे गढ़े। एक खंभे की ऊंचाई 8 मीटर की थी और इसका घेरा 5.5 मीटर। दूसरा खंभा भी इसी के समान था। उसने ढाले गए कांसे के दो सिर बनाए कि इन्हें खंभों के ऊपर बैठाया जा सके। हर एक सिर की ऊंचाई 2.25 मीटर थी। इसके बाद हूराम ने दोनों ही खंभों के सिरों के लिए कड़ियों में बुनी हुई 7-7 चौकोर जालीदार झालरें बनाई। इसी प्रकार उसने अनार गढ़े और खंभों के सिरों को ढकने के लिए 2 पंक्तियों में अनार लटका दिए। ड्योढ़ी के खंभों के सिरों पर सोसन के फूल उकेरे गए थे। इनकी ऊंचाई लगभग 2 मीटर थी। दोनों खंभों पर सिर बैठाए गए थे। दोनों खंभों की गोलाकार रचना के ऊपर जालीदार रचना के पास खंभों के सिरों के चारों ओर 2 पंक्तियों में 200 अनार उकेरे गए थे। उन्होंने मंदिर के बरामदा में खंभे बनाए, एक दक्षिण दिशा में, दूसरा उत्तर दिशा में। दक्षिण खंभे को उन्होंने याकीन नाम दिया और उत्तरी खंभे को बोअज। खंभों के ऊपरी छोर पर सोसन के फूल उकेरे गए थे। यह सब होने पर खंभों से संबंधित सारा काम पूरा हो गया। शलोमोन ने ढली हुई धातु का एक पानी का हौद बनवाया जो गोल था और उसका व्यास 4.5 मीटर और उसकी ऊंचाई थी 2.25 मीटर। इसका कुल घेर था 13.5 मीटर। इस कुंड की किनारी के नीचे सज्जापूर्ण तुम्बियों की 2 पंक्तियां ढाली गई थीं, प्रति मीटर 20 तुम्बियां। यह हौद 12 बछड़ों पर रखा गया था। 3 उत्तर दिशा की ओर मुख किए हुए थे, 3 पश्चिम दिशा की ओर, 3 दक्षिण दिशा की ओर और 3 पूर्व दिशा की ओर थे। यह हौद इन्हीं पर रखा गया था और इन सभी के पिछले पैर अंदर की ओर थे। इस कुंड की धातु की मोटाई लगभग 8 सेंटीमीटर थी। इसकी किनारी को वैसा ही आकार दिया गया था जैसा किसी कटोरे को सोसन के फूल के समान आकार दिया गया हो। इस कुंड में लगभग 90,000 लीटर जल समाता था। हूराम ने कांसे के 10 ठेले बनाए। हर एक ठेले की लंबाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर 35 सेंटीमीटर थी। इन ठेलों की बनावट इस प्रकार की थी, इनमें ऐसे हिल्ले थे जो चौकटों में लगाए थे। चौकटों में लगाए गए इन हिल्लों पर सिंह, बैल और करूबों की आकृतियां उभरी हुई थीं। इन आकृतियां के ऊपर और नीचे तिरछी झालरें लटकी हुई थीं। हर एक ठेले के कांसे के 4-4 पहिए और कांसे की धुरियां थीं। चारों कोनों पर चिल मची रखने का स्थान था। ये आधार ढालकर बनाए गए थे। इनके किनारों पर दोनों ओर झालरें लटक रही थीं। ठेलों के भीतर गोलाकार गड्ढा था जो लगभग 0.5 मीटर गहरा था। इसे एक आधार पर रखा गया था जो लगभग 70 सेंटीमीटर था, जिस पर चित्रकारी की गई थी। ठेले के हिल्ले गोल नहीं, चौकोर थे। चारों पहिए हिल्लों के नीचे थे और पहियों की धुरियां ठेलों की मूल संरचना का ही अंग थी। पहियों की ऊंचाई लगभग 70 सेंटीमीटर थी। इन पहियों को ठीक रथ के पहियों समान गढ़ा गया था। उनकी धुरियां, नेमियां, आरियां और नाभियां सभी ढाले हुए थे। हर एक ठेले के चारों कोनों पर एक एक टेक था और यह टेक ठेले ही का अंग था। ठेले के ऊपरी ओर पर लगभग 23 सेंटीमीटर चौड़ी गोल पट्टी लगी हुई थी। ठेले की ऊपरी टेके और हिल्ले धातु के एक ही टुकड़े से गढ़ गए थे। वे ठेले से जोड़े नहीं गए थे। हूराम ने हिल्लों पर उनकी किनारियों और रिक्त स्थानों पर करूब, सिंह और खजूर वृक्ष उकेर दिए थे। इन सभी के आसपास झालरें उकेरी गई थी। हूराम ने 10 ठेले इस प्रकार बनाए। वे सभी एक ही सांचे, एक ही आकार में ढाले गए थे। हूराम ने कांसे की 10 चिलमचियां भी बनाई। हर एक में 1,800 लीटर जल समाता था। हर एक चिलमची लगभग 2 मीटर गहरी थी। हर एक ठेले के लिए एक एक चिलमची ठहराई गई थी। इसके बाद उन्होंने 5 ठेले भवन के दक्षिण की ओर और 5 उत्तरी ओर में लगा दिए। उन्होंने कुंड को भवन की दाहिनी ओर स्थापित कर दिया। यह सब करके हूराम ने चिमचियां, बेलचे और कटोरियां भी बनाई। हूराम ने राजा शलोमोन के लिए यहावे के भवन से संबंधित सारा काम खत्म कर दिया। 2 मीनार, इन मीनारों के ऊपर लगाए गए 2 गोलाकार कंगनियां, खंभों के सिरों के गोलाकार भागों के ऊपर लटकाई गई जाली, दोनों मीनारों के सिरों पर लगाए गए 400 अनार, हर एक के लिए 200 अनार जो खंभों के सिरों पर लगाए गए थे, 10 ठेले जिन पर टेकों पर रखी गई 10 चिलमचियां, और वह एक होद और उसके नीचे स्थापित किए गए वे 12 बछड़े और चिलमचियां, बेलचे और कटोरियां। यहावे के भवन में राजा शलोमोन के लिए हूराम ने जितने भी बर्तन बनाए थे वे सभी रगड़कर चमकाए गए कांसे के थे। राजा ने इनकी ढलाई यर्दन घाटी में, जो सुखोत और जारेथान में है, मिट्टी के साँचों में ढालकर की थी। शलोमोन ने इन्हें तोलना सही ना समझा, क्योंकि ये सब संख्या में बहुत ही ज्यादा थे, कांसे को मापना संभव ना था। इस प्रकार शलोमोन ने यहावे के भवन में इस्तेमाल के लिए ठहराए गए सभी बर्तनों का निर्माण पूरा किया। सोने की वेदी, भेंट की रोटी के लिए ठहराई गई सोने की मेज, अंदरूनी कमरे के सामने शुद्ध कुंदन के दीवट 5 दक्षिण दिशा में और 5 उत्तर दिशा में, सोने के फूल, दीपक और चिमटे, बर्तन, कुंदन के ठहराए गए बर्तन, अंदरूनी कमरा, परम पवित्र स्थान के दरवाजों के लिए सोने के ही कब्जे और बीच वाले भवन के दरवाजों के लिए सोने के कब्जे। इस प्रकार यहावे के भवन का सारा काम जो राजा शलोमोन ने शुरू किया था पूरा हुआ। तब शलोमोन अपने पिता दाविद द्वारा भेंट की हुई वस्तुएं मंदिर में ले आए। उन्होंने चांदी, सोना और सारे बर्तन परमेश्वर के भवन के खजाने में इकट्ठा कर दिए। राजाओं की पहली पुस्तक, अध्याय 8। यहावे के भवन में संदूक की प्रतिष्ठा। राजा शलोमोन ने यरूशलेम में इज़राइल के सभी पुरनियों को, गोत्र प्रमुखों और पूर्वजों के परिवारों के प्रधानों को आमंत्रित किया। ये सभी राजा शलोमोन के सामने यरूशलेम में इकट्ठे हो गए कि यहावे की वाचा के संदूक को दाविद के नगर अर्थात जियोन से लाया जा सके। 7वें महीने, एथनीम नामक महीने में, उस उत्सव के अवसर पर सारी इज़राइली प्रजा राजा शलोमोन के सामने इकट्ठी हुई। तब इज़राइल के सभी प्राचीन सामने आए और पुरोहितों ने संदूक को उठाया। पुरोहित और लेवी यहावे के संदूक, मिलाप वाला तंबू और उसमें रखे हुए सभी पवित्र बर्तन अपने साथ ले आए थे। राजा शलोमोन और इज़राइल की सारी सभा जो उस समय उनके साथ वहां संदूक के सामने इकट्ठी हुई थी, इतनी बड़ी संख्या में भेड़े और बछड़े बलि कर रहे थे कि उनकी गिनती असंभव हो गई। इसके बाद पुरोहितों ने यहावे की वाचा के संदूक को लाकर उसके लिए निर्धारित स्थान पर भवन के भीतरी कमरे में परम पवित्र स्थान में करूबों के पंखों के नीचे रख दिया, क्योंकि करूब संदूक के लिए तय स्थान पर अपने पंख फैलाए हुए थे। यह ऐसा प्रबंध था कि करूबों के पंख संदूक को उसके उठाने के लिए बनाई गई बल्लियों को आच्छादित करें। ये डंडे इतने लंबे थे कि संदूक के इन डंडों को भीतरी कमरे से देखा जा सकता था, मगर इसके बाहर से नहीं। आज तक वे इसी स्थिति में है। संदूक में पत्थर के उन 2 पट्टियों के अलावा कुछ ना था जिन्हें मोशे ने होरे पर्वत पर उसमें रख दी थी, जहां यहावे ने इज़राइल से वाचा बांधी थी जब वे मिस्र देश से बाहर आए थे। जैसे ही पुरोहित पवित्र स्थान से बाहर आए, यहावे के भवन में बादल समा गया। इसके कारण अपनी सेवा पूरी करने के लिए पुरोहित वहां ठहरे ना रह सके, क्योंकि यहावे के तेज से अपना भवन भर गया था। तब शलोमोन ने यह कहा, यहावे ने यह प्रकट किया है कि वह घने बादल में रहना सही समझते हैं। निश्चय आपके लिए मैंने एक ऐसा भवन बनवाया है कि आप उसमें हमेशा रहें। यह कहकर राजा ने सारी इज़राइली प्रजा की ओर होकर उनको आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर सारी इज़राइली सभा खड़ी हुई थी। यहावे इज़राइल के परमेश्वर, जिन्होंने अपने हाथों से वह पूरा कर दिखाया जो उन्होंने अपने मुख से मेरे पिता दाविद से कहा था, जिस दिन से मैंने अपनी प्रजा इज़राइली गोत्रों में से किसी भी नगर को इस उद्देश्य से नहीं चुना कि वहां मेरा नाम प्रतिष्ठित हो, हां मैंने दाविद को अपनी प्रजा इज़राइल का शासक होने के लिए चुना। मेरे पिता दाविद की इच्छा थी कि वह यहावे इज़राइल के परमेश्वर की महिमा के लिए एक भवन बनवाए, किंतु यहावे ने मेरे पिता दाविद से कहा, तुम्हारे मन में मेरे लिए भवन के निर्माण का आना एक उत्तम विचार है, फिर भी इस भवन को तुम नहीं बल्कि वह पुत्र जो तुमसे पैदा होगा मेरी महिमा के लिए वही भवन बनाएगा। आज यहावे ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की है, क्योंकि अब जैसे यहावे ने प्रतिज्ञा की थी और मैंने यहावे इज़राइल के परमेश्वर की महिमा के लिए इस भवन को बनवाया है। इसमें मैंने संदूक के लिए स्थान निर्धारित किया है, जिसमें हमारे पूर्वजों से बांधी गई यहावे की वाचा रखी है, वह वाचा जो उन्होंने उनसे उस समय बांधी थी जब उन्होंने उन्हें मिस्र देश से निकाला था। समर्पण की प्रार्थना। इसके बाद शलोमोन सारी इज़राइल सभा के देखते हाथों को स्वर्ग की ओर फैलाकर यहावे की वेदी के सामने खड़े हो गए। उस समय उनके वचन ये थे, यहावे इज़राइल के परमेश्वर, आपके तुल्य परमेश्वर ना तो कोई ऊपर स्वर्ग में है और ना यहाँ नीचे धरती पर, जो अपने उन सेवकों पर अपना अपार प्रेम दिखाते हुए अपनी वाचा को पूर्ण करता है, जिनका जीवन आपके प्रति पूरी तरह समर्पित है। आपने अपने सेवक मेरे पिता दाविद को जो वचन दिया था उसे पूरा किया है। आज आपने अपने शब्द को सच्चाई में बदल दिया है। आपके सेवक दाविद से की गई अपनी वह प्रतिज्ञा पूरी करें जो आपने उनसे इन शब्दों में की थी। अब इज़राइल के परमेश्वर यहावे, आपके सेवक मेरे पिता दाविद के लिए अपनी यह प्रतिज्ञा पूरी कीजिए, मेरे सामने इज़राइल के सिंहासन पर तुम्हारे उत्तराधिकारी की कोई कमी ना होगी, सिर्फ यदि तुम्हारे पुत्र सावधानी पूर्वक मेरे सामने अपने आचरण के विषय में सच्चे रहें, ठीक जिस प्रकार तुम्हारा आचरण मेरे सामने सच्चा रहा है। इसलिए अब इज़राइल के परमेश्वर, अपने सेवक मेरे पिता दाविद से की गई प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। मगर क्या वास्तव में परमेश्वर पृथ्वी पर रहेंगे? स्वर्ग, हाँ, सबसे ऊंचा स्वर्ग भी आपको समाकर नहीं रख सकता, तो भला मेरे द्वारा बनाए गए भवन में यह कैसे संभव हो सकता है? फिर भी अपने सेवक की विनती और प्रार्थना का ध्यान रखिए, यहावे मेरे परमेश्वर, इस दोहाई को, इस गिड़गिड़ाहट को सुन लीजिए जो आपका सेवक आपके सामने आज प्रस्तुत कर रहा है, कि इस भवन की ओर आपकी दृष्टि रात और दिन लगी रहे। इस भवन पर जिसके विषय में आपने कहा था मेरी प्रतिष्ठा वहां बनी रहेगी, कि आप उस प्रार्थना को सुन सके जो आपका सेवक इस ओर होकर कर रहा है। अपने सेवक और अपनी प्रजा इज़राइल की विनती सुन लीजिए जब वे इस स्थान की ओर मुंह कर आपसे करते रहे और स्वर्ग अपने घर में इसे सुने, और जब आप यह सुने आप उन्हें क्षमा प्रदान करें। जब कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी के विरुद्ध पाप करता है और उसे शपथ लेने के लिए विवश किया जाता है और वह आकर इस भवन में आपकी वेदी के सामने शपथ लेता है, तब आप स्वर्ग से सुने और अपने सेवकों का न्याय करें। दुराचारी का दंड उसके दुराचार को उसी पर प्रभावी करने के द्वारा दें, और सदाचारी को उसके सदाचार का प्रतिफल देने के द्वारा। जब आपकी प्रजा इज़राइल उनके शत्रुओं द्वारा इसलिए हार जाती है कि उन्होंने आपके विरुद्ध पाप किया है और वे दोबारा आपकी ओर लौट आते हैं, आपके नाम की दोहाई देते हुए प्रार्थना करते हैं और इस भवन में आपसे विनती करते हैं, तब स्वर्ग से यह सुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा कर दीजिए और उन्हें उस देश में लौटा ले आइए जो आपने उन्हें और उनके पूर्वजों को दिया है। जब आप बारिश इसलिए रोक दे कि आपकी प्रजा ने आपके विरुद्ध पाप किया है, और फिर जब वे इस स्थान की ओर फिरकर प्रार्थना करें और आपके प्रति सच्चे हों, जब आप उन्हें सताए और वे पाप से फिर जाएं, तब स्वर्ग में अपने सेवकों और अपनी प्रजा इसराइल की दोहाई सुनकर उनका पाप क्षमा कर दें। आप उन्हें उन अच्छे मार्ग पर चलने की शिक्षा दें, फिर अपनी भूमि पर बारिश भेजें, उस भूमि पर जिसे आपने उत्तराधिकार के रूप में अपनी प्रजा को प्रदान किया है। जब देश में अकाल का प्रकोप हो जाए, यदि यहाँ महामारी हो जाए, पाला पड़े अथवा उपज में गेरुआ रोग लग जाए, टिड्डियों अथवा इल्लियों का आक्रमण हो जाए, यदि शत्रु उन्हीं के देश में उन्हीं के द्वार के भीतर उन्हें बंदी बना ले, कोई भी महामारी हो, कोई भी व्याधि हो, कैसी भी प्रार्थना की जाए, किसी भी व्यक्ति या सारे इसराइल देश द्वारा हर एक अपनी हृदय वेदना को पहचानते हुए जब अपना हाथ इस भवन की ओर बढ़ाए, तब अपने घर स्वर्ग में यह सुनकर क्षमा प्रदान करे और हर एक को जिसके हृदय को आप जानते हैं उसके सभी कामों के अनुसार प्रतिफल दे। क्योंकि आप सिर्फ आप हर एक मानव हृदय को जानते हैं कि वे इस देश में जो आपने उनके पूर्वजों को प्रदान किया है रहते हुए आपके प्रति आजीवन श्रद्धा बनाए रखें। इसी प्रकार जब कोई परदेशी जो आपकी प्रजा इसराइल में से नहीं है आपका नाम सुनकर दूर देश से यहाँ आता है, क्योंकि आपकी महिमा, आपके महाकार्य और आपकी महाशक्ति के विषय में सुनकर वे यहाँ जरूर आएंगे, तब जब वह विदेशी यहाँ आकर इस भवन की ओर होकर प्रार्थना करें, अपनी आवाज स्वर्ग में सुनकर उन सभी विनतियों को पूरा करें जिसकी याचना उस परदेशी ने की है, कि पृथ्वी के सभी मनुष्यों को आपकी महिमा का ज्ञान हो जाए, उनमें आपके प्रति भय जाग जाए जैसा आपकी प्रजा इसराइल में है, और उन्हें यह एहसास हो जाए कि यह आपकी महिमा में मेरे द्वारा बनाया गया भवन है। जब आपकी प्रजा अपने शत्रु के विरुद्ध बाहर जाए, चाहे आप उन्हें किसी भी मार्ग से भेजें, जब वे आपके द्वारा चुने गए इस नगर और मेरे द्वारा आपकी महिमा में बनाए गए इस भवन की ओर होकर हे प्रभु यहावे आपसे प्रार्थना करें, तब स्वर्ग में उनकी प्रार्थना और अनुरोध सुनकर उनके पक्ष में निर्णय की जाए। यदि वे आपके विरुद्ध पाप करें, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं जो पाप नहीं करता, और आप उन पर क्रोध हो जाएं और उन्हें शत्रु के अधीन कर दें कि उन्हें बंदी बनाकर शत्रु के देश ले जाया जाए, दूर देश अथवा निकट, फिर भी यदि वे उस बंदिता के देश में चेत कर पश्चाताप करें और अपने बंधुआई के देश में यह कहते हुए दोहाई दें, हमने पाप किया है, हमने कुटिलता और दुष्टता भरे काम किए हैं, यदि वे अपने शत्रुओं के देश में ही जिन्होंने उन्हें बंदी बना रखा है पूरे मन और पूरे हृदय से पश्चाताप करें, अपने देश की ओर होकर प्रार्थना करें जो देश आपने उनके पूर्वजों को दिया है, इस नगर की ओर जिसे आपने चुना है और जो भवन मैंने आपकी महिमा में बनवाया है, तब अपने घर स्वर्ग में उनकी प्रार्थना सुन लीजिए और उनका न्याय कीजिए और अपनी प्रजा को क्षमा कीजिए जिन्होंने आपके विरुद्ध पाप किया है, उन्हें उनकी दृष्टि में कृपा प्रदान करें जिन्होंने उन्हें बंदी बना रखा है कि वे उनकी कृपा के पात्र हो जाएं, क्योंकि वे आप ही के लोग हैं, आप ही की संपत्ति, जिन्हें आप मिस्र देश से लोहा गलाने की भट्टी में से निकालकर लाए हैं। आपकी आंखें आपके सेवक की ओर आपकी प्रजा इसराइल की प्रार्थना के लिए खुली रहे कि वे जब भी आपको पुकारें आप उनकी सुन ले। प्रभु यहावे, जैसा आपने अपने सेवक मोशे के द्वारा भेजा जब आप हमारे पूर्वजों को मिस्र देश से बाहर ला रहे थे, आपने इन्हें विश्व के सभी जनताओं से अलग किया कि वे आपके मीरास होकर रहे। जब शलोमोन यह प्रार्थना और विनती यहावे से कर चुके, वह यहावे की वेदी के सामने से उठे जहां वह घुटने टेक स्वर्ग की ओर अपने हाथ बढ़ाए हुए थे। उन्होंने खड़े होकर पूरी इसराइली सभा के लिए ऊंची आवाज में यह आशीर्वाद दिया, धन्य है यहावे जिन्होंने अपनी सभी प्रतिज्ञाओं के अनुसार अपनी प्रजा इसराइल को शांति दी है। उनके सेवक मोशे द्वारा दी गई उनकी सभी भली प्रतिज्ञाओं में से एक भी पूरी हुई बिना नहीं रही है। यहावे हमारे परमेश्वर हमारे साथ रहे जैसे वह हमारे पूर्वजों के साथ रहे थे। ऐसा कभी न हो कि वह हमें त्याग दे, हमें भुला दे, कि वह हमारे हृदय अपनी ओर लगाए रखे, कि हम उन्हीं के मार्गों पर चले और उनके आदेशों, नियमों और विधियों का पालन करें जिन्हें उन्होंने हमारे पूर्वजों को सौंपा था। मेरे ये शब्द जिन्हें मैंने यहावे तक अपनी विनती करने के लिए इस्तेमाल किया है, रात दिन यहावे हमारे परमेश्वर के निकट बने रहे और दिन की आवश्यकता के अनुसार वह अपने सेवक और अपनी प्रजा इसराइल के पक्ष में अपना निर्णय दे, कि पृथ्वी पर सभी को यह मालूम हो जाए कि यहावे ही परमेश्वर है, दूसरा कोई नहीं। तुम्हारा हृदय यहावे हमारे परमेश्वर के प्रति पूरी तरह सच्चा बना रहे और तुम उनके नियमों और उनके आदेशों को पालन करते रहो, जैसा तुम यहां आज कर रहे हो। समर्पण संबंधी बलियां। तब राजा और सारे इसराइल ने उनके साथ यहावे के सामने बलि चढ़ाई। शलोमोन ने 22,000 बछड़े और 120,000 भेड़े मेल बलि के रूप में चढ़ाई। इस प्रकार राजा और सारी इसराइल प्रजा ने यहावे के भवन को समर्पित किया। उसी समय राजा ने यहावे के भवन के सामने के बीच वाले आंगन को समर्पित किया, क्योंकि उसी स्थान पर उन्होंने होमबलि, अनबलि और मेल बलि की चर्बी के लिए वह कांसे की वेदी बहुत ही छोटी पड़ रही थी। शलोमोन ने इस अवसर पर एक भोज दिया, इसमें सारा इसराइल शामिल हुआ। यह बहुत ही बड़ा सम्मेलन था जिसमें लेबो हामात से लेकर मिस्र देश की नदी तक से लोग आए हुए थे। वे यहावे हमारे परमेश्वर के सामने 7 दिन तक रहे। 8वें दिन राजा ने सभा को विदा किया। प्रजा ने राजा के लिए शुभकामनाओं के शब्द कहे और बहुत ही आनंद के साथ अपने अपने घर लौट गए। उनके आनंद का विषय था यहावे द्वारा उनके सेवक दाविद और उनकी प्रजा इसराइल के ऊपर दिखाई गई दया। राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 9। शलोमोन को यहावे का दर्शन। जब शलोमोन ने यहावे के भवन, राजमहल और जो कुछ भी करने की योजना बनाई थी और उसे पूरा कर चुके, तब यहावे दूसरी बार शलोमोन के सामने प्रकट हुए, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार वह उनके सामने गिबियोन में प्रकट हुए थे। यहावे ने उनसे कहा, जो प्रार्थना तुमने मेरे सामने की है वह मैंने सुन ली है। तुम्हारे द्वारा बनाए इस भवन को सदा सर्वदा के लिए अपना नाम लगाने के द्वारा पवित्र बना लिया है, कि इस स्थान पर मेरी महिमा हमेशा बनी रहे और मेरी दृष्टि और मेरा हृदय हमेशा यहीं लगे रहे। तुम्हारे बारे में मुझे यह कहना है, यदि तुम मेरे सामने चलते रहोगे जैसे तुम्हारे पिता दाविद हृदय की सच्चाई और सरलता में चलते रहे, यदि तुम उन सभी आदेशों का पालन करते रहो जो मैंने तुम्हें दिए हैं और उन सभी नियमों और आदेशों का पालन करते रहो, तब तुम्हारे पिता दाविद से की गई इस प्रतिज्ञा के अनुसार इसराइल के सिंहासन को स्थिर करूंगा और इसराइल के सिंहासन पर बैठने के लिए तेरे वंश में पुरुष का अभाव ना होगा। यदि तुम और तुम्हारे वंशज मेरे उन सभी नियमों और आदेशों का अनुसरण करना छोड़ दो जो मैंने तुम्हारे सामने रखे हैं और जाकर अन्य देवताओं की सेवा और आराधना करने लगो, तब उस देश से जो मैंने उन्हें दिया इसराइल को अलग कर दूंगा और उस भवन को जो मैंने अपनी महिमा के लिए प्रतिष्ठित किया है अपनी दृष्टि से दूर कर दूंगा। फलस्वरूप इसराइल तब सभी लोगों के बीच उपहास और निंदा का पात्र बन जाएगा। यह भवन खंडरों का ढेर होकर रह जाएगा। तब हर एक व्यक्ति जो उनके पास से होकर जाएगा चकित हो सांस ऊपर खींचे यह कह उठेंगे, क्या उन्होंने यहावे अपने परमेश्वर को भुला दिया था, यहावे जिन्होंने उनके पूर्वजों को मिस्र देश से बाहर निकाल लाया था। अब उन्होंने अन्य देवताओं का अनुसरण करने का निश्चय किया, उन्होंने उन देवताओं की सेवा और पूजा करनी आरंभ की। यही कारण है यहावे ने उन पर यह सारी घोर विपत्ति डाल दी है। शलोमोन के दूसरे काम। 20 साल खत्म होते होते शलोमोन यहावे का भवन और राजमहल बना चुके थे। तब तक सोर देश के राजा हीराम शलोमोन की इच्छा अनुसार देवदार और सनोवर की लकड़ी और सोने की आपूर्ति करते रहे। राजा शलोमोन ने हीराम को गलील क्षेत्र में 20 नगर दे दिए, किंतु जब हीराम ने आकर उन नगरों को देखा उन्हें खुशी नहीं हुई। उन्होंने शलोमोन से कहा, मेरे भाई तुमने मुझे ये कैसे नगर दे दिए हैं, इसलिए आज तक वे नगर काबुल के नाम से जाने जाते हैं। हीराम शलोमोन को लगभग 4000 किलो सोना भेज चुके थे। शलोमोन ने जिन लोगों को जबरदस्ती काम पर लगाया था उसका लेखा इस प्रकार है। उन्होंने यहावे का भवन और राजमहल, मिल्लो और यरूशलेम की शहरपना और हाजोर, मगिदो और गेजेर नगर को बनाने का काम किया। मिस्र देश के राजा फरो ने गेजेर नगर को अपने अधीन कर उसे भस्म कर दिया था। उन्होंने वहां रह रहे कनान मूल के वासियों को मारकर नगर को भस्म कर दिया। फिर उसने यह नगर दहेज के रूप में अपनी पुत्री को दे दिया जो शलोमोन की पत्नी थी। तब शलोमोन ने गेजेर नगर को दोबारा से बसाया तथा घाटी क्षेत्र में बेत होरोन, बालाथ और मरुभूमि में स्थित तादमोर को भी बसाया। उन्होंने दूसरे भंडार नगरों को भी बनवाया जहां उनके रथ, घोड़े और घुड़सवार रखे गए थे। इनके अलावा उन्होंने यरूशलेम, लबानोन और सारे देश में अपनी इच्छा के अनुसार भवन बनवाए। शलोमोन ने इन सभी को जबरदस्ती दास बनाकर निर्माण काम में लगा दिया। अमोरी, हित्ती, परिजी, हिव्वी और यबूसी ये इज़राइली नहीं थे। उनकी संतानों को भी शलोमोन ने दास बना लिए जो उनके बाद उस देश में बचे रह गए थे, जिन्हें इज़राइली वध ना कर सके थे, ये सब आज भी दास ही हैं। मगर शलोमोन ने किसी भी इज़राइली को दास नहीं बनाया, वे सैनिक बनाए जाते थे, उन्हें सैन्य अधिकारी बनाया जाता था, योद्धा, कप्तान, रथ हाकिम और घुड़सवार। सभी कामों के ऊपर शलोमोन ने 550 प्रमुख अधिकारी ठहरा दिए थे। ये सभी पद श्रमिकों के अधिकारी थे जो भवन बनाने के काम में लगे हुए थे। जब फरो की पुत्री दाविद नगर छोड़कर उस राजमहल में आ गई जो शलोमोन द्वारा बनवाया गया था, तब शलोमोन ने उसके लिए मिल्लो को बनवा दिया। राजा शलोमोन साल में 3 बार उस वेदी पर होम और मेल बलि चढ़ाते थे जो उन्होंने यहावे के लिए बनाई थी। इस पर वह धूप जलाकर यहावे के सामने की वेदी पर बलि चढ़ाते थे। इस प्रकार उन्होंने भवन निर्माण समाप्त किया। राजा शलोमोन ने एजियोन गेबेर में जलयानों का एक बेड़ा बनाया था। यह स्थान एदोम प्रदेश में लाल सागर के तट पर एलाथ नामक स्थान के पास है। राजा हीराम ने बेड़े के साथ अपने सेवक भेज दिए। इनमें ऐसे सेवक थे जिन्हें समुद्र का ज्ञान था। इनके साथ शलोमोन के सेवक भी थे। ये सभी ओफीर नगर को गए और वहां से वे लगभग 14,000 किलो सोना लेकर लौटे। उन्होंने यह शलोमोन को भेंट कर दिया। राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 10। शीबा की रानी की भेंट यात्रा। जब शीबा की रानी ने यहावे के नाम के कारण शलोमोन को मिली ख्याति सुनी, वह कठिन प्रश्नों से उन्हें परखने के लिए आई। जब वह यरूशलेम पहुंची, उनके साथ एक बड़ा कर्मचारी दल, ऊंटों पर मसाले और बड़ी मात्रा में सोना और कीमती पत्थर थे। जब उनकी भेंट शलोमोन से हुई, उन्होंने शलोमोन के सामने वह सब कह डाला जो उनके मन में था। शलोमोन ने उनके सभी सवालों के जवाब दिए। ऐसा कुछ भी ना था जो राजा के ज्ञान के बाहर था, जो वह समझा ना सके। जब शीबा की रानी शलोमोन की पूरी बुद्धिमानी को परख चुकी और उनके द्वारा बनाया भवन, उनकी मेज पर परोसा गया भोजन, उनके कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था, उनके सेवकों द्वारा की गई सेवा, उनके कपड़े, उनके पिलाने वाले और यहावे के भवन में चढ़ाई गई होमबलियां देख वह हैरान रह गई। उन्होंने राजा से कहा, आपकी प्रजा और आपकी बुद्धिमानी के बारे में जो मैंने अपने देश में सुना था वह सच था। मगर मैंने उन समाचारों का विश्वास ही नहीं किया जब तक मैंने खुद आकर अपनी ही आंखों से यह सब देख ना लिया। सच तो यह है कि मुझे तो इसका आधा भी ना बताया गया था। आपकी बुद्धि और समृद्धि उस महिमा से कहीं बढ़कर है जो मेरे सामने वर्णन की गई थी। कैसे सुखी है आपके लोग और आपके ये सेवक जो सदा आपके सामने रहते हैं और आपकी बुद्धिमानी की बातें सुनते रहते हैं। धन्य है यहावे आपके परमेश्वर, आप पर जिनकी कृपा दृष्टि है, जिन्होंने आपको इज़राइल के सिंहासन पर बैठाया है। यहावे हमेशा से इज़राइल से प्रेम करते आए हैं, इसलिए उन्होंने आपको राजा के पद पर रखा है कि आप न्याय और धर्म के साथ शासन करें। उन्होंने राजा को भेंट में लगभग 4,000 किलो सोना और बड़ी मात्रा में मसाले और कीमती पत्थर दे दिए। इतनी मात्रा में मसाले फिर कभी नहीं आए जितने शीबा की रानी ने राजा शलोमोन को भेंट में दिए थे। इसके अलावा हीराम के जो जहाज ओफीर देश से सोना लाए थे, वही जहाज ओफीर देश से बड़ी मात्रा में चंदन की लकड़ी और कीमती पत्थर लेकर आए। जिस लकड़ी से राजा शलोमोन ने यहावे के भवन के लिए और राजमहल के लिए खंभे और गायकों के लिए वीणा और सारंगियां बना दिए, ऐसी चंदन की लकड़ी देखी ना गई, क्योंकि फिर इसे लाया ही नहीं गया। राजा शलोमोन ने अपने खजाने में से शीबा की रानी को अपनी राजकीय उदारता के अनुसार दे दिया। इसके अलावा उन्होंने शीबा की रानी को उसकी इच्छा और विनती के अनुसार भी दे दिया। वह अपने सेवकों को लेकर अपने देश लौट गई। शलोमोन की संपदा, ऐश्वर्य और प्रजा। शलोमोन को हर साल लगभग 22,000 किलो सोना मिलता था। यह राजकीय खजानों में व्यापारियों, यात्रियों, पश्चिमी देशों के राजाओं द्वारा दिए गए धन और देश के ही राज्यपालों द्वारा प्राप्त कर धन से इकट्ठा धन के अलावा था। राजा शलोमोन ने पीटे हुए सोने की 200 विशाल ढालों को बनवाया। हर एक ढाल में लगभग 7 किलो सोना लगाया गया था। शलोमोन ने पीटे हुए सोने से 300 ढालों को भी बनवाया। हर एक ढाल में लगभग 3.5 किलो सोना लगाया गया था। इन सभी को राजा ने लबानोन वन महल में रख दिया। राजा ने हाथी दांत का एक सिंहासन भी बनवाया और उसे शुद्ध सोने से मढ़ दिया। सिंहासन की 6 सीढ़ियां थी और इसके पीछे एक गोल शीर्ष थी। सिंहासन के दोनों ओर 2 हत्थे थे और उन्हीं से लगे हुई दोनों ओर खड़े हुए शेर गढ़े गए थे। हर एक सीढ़ी के दोनों ओर खड़े हुए शेर गढ़े गए थे। कुल मिलाकर 12 शेर थे। इसके समान सिंहासन और किसी राज्य में नहीं बनवाया गया था। राजा शलोमोन के पीने के सारे बर्तन सोने के थे। लबानोन वन भवन में इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन शुद्ध सोने के थे। चांदी कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुई थी, क्योंकि शलोमोन के शासनकाल में चांदी की कोई कीमत ही ना थी। तर्शीश के सागर में राजा हीराम के साथ जहाजों का एक समूह था। हर 3 साल में तर्शीश के जहाज वहां सोना, चांदी, हाथी दांत, बंदर और मोर लेकर आते थे। इस प्रकार राजा शलोमोन पृथ्वी के सभी राजाओं से धन और बुद्धि में बहुत बढ़कर थे। सारी पृथ्वी उसकी बुद्धिमानी की बातें जो परमेश्वर ने उसके मन में दी थी सुनने के लिए उनके सामने जाने की इच्छा रखती थी। हर साल सभी देखने वाले अपने साथ चांदी और सोने की वस्तुएं, कपड़े, हथियार, मसाले, घोड़े और खच्चर भेंट देने के लिए लाया करते थे। शलोमोन ने अब तक 1,400 रथ, 12,000 घुड़सवार एकत्र कर लिए थे। इन सबको उसने रथों के लिए बनाए नगरों और यरूशलेम में राजा के लिए ठहराए गए स्थानों पर रखवा दिया था। राजा द्वारा यरूशलेम में चांदी का मूल्य वैसा ही कर दिया गया था जैसा पत्थरों का होता है, और देवदार की लकड़ी का ऐसा जैसे तराई के गूलर के पेड़ों का। शलोमोन घोड़ों का आयात मिस्र और कवे से करते थे। राजा के व्यापारी इन्हें दाम देकर कवे से लाया करते थे। लाए गए एक रथ की कीमत होती थी चांदी के 600 सिक्के। राजा के व्यापारी इसी प्रकार इनका निर्यात सभी हित्ती और आरामी राजाओं को कर देते थे। राजाओं की पहली पुस्तक, अध्याय 11। शलोमोन का पतन। परो की पुत्री के अलावा शलोमोन को अनेक विदेशी स्त्रियों से प्रेम हो गया था। मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती स्त्रियों से ये वे राष्ट्र थे जिनके विषय में यहावे ने इसराइल को चेतावनी देते हुए कहा था, तुम ना तो उन जनताओं से कोई वैवाहिक संबंध रखना और ना उनका ही तुम्हारे साथ किसी प्रकार का संबंध हो, क्योंकि यह तय है कि वे तुम्हारा हृदय अपने देवताओं की ओर लगा ही लेंगे। शलोमोन को इन स्त्रियों से गहरा प्रेम हो गया था। शलोमोन ने 700 राजकुमारियों से विवाह किया और उनकी 300 उप पत्नियां थीं। उनकी पत्नियों ने उनका हृदय परमेश्वर से दूर कर दिया, क्योंकि जब शलोमोन की उम्र ढलने लगी, उनकी पत्नियों ने उनका हृदय पराय देवताओं की ओर कर दिया। उनका हृदय यहावे उनके परमेश्वर के लिए पूरी तरह सच्चा नहीं रह गया, जैसे उनके पिता दाविद का था। शलोमोन ने सीदोनी वासियों की देवी अश्तोरेत और अमोनियों के घृणित देवता मिलकाम की आराधना करनी शुरू कर दी। यह करते हुए शलोमोन ने वह किया जो यहावे की दृष्टि में गलत था। अब वह पूरी तरह यहावे के मार्गों पर नहीं चल रहे थे, जैसा दाविद उनके पिता ने किया था। शलोमोन ने यरूशलेम की पूर्वी पहाड़ी पर मोआब देश के घृणित देवता खेमोश और अमोनियों के घृणित देवता मोलेक के आदर में पूजा घर बनवाए। यही उन्होंने अपने सभी विदेशी पत्नियों के लिए किया जो इन पर अपने अपने देवताओं के लिए बलि चढ़ाया करती और धूप जलाया करती थी। इन कामों के कारण यहावे शलोमोन से क्रोधित हो गए, क्योंकि उनका मन यहावे इसराइल के परमेश्वर से, जिन्होंने दो बार उन्हें दर्शन दिए थे, दूर हो गया था, जिन्होंने उन्हें यह आदेश दिया था कि वह पराए देवताओं के पीछे ना चले, मगर उन्होंने यहावे के इस आदेश का पालन ना किया। इसलिए यहावे ने शलोमोन से कहा, तुम्हारे इसी काम के कारण और इसलिए कि तुमने मेरी वाचा और विधियों का पालन नहीं किया जिनका मैंने तुम्हें आदेश दिया था, यह तय है कि मैं तुम्हारा राज्य तुमसे छीनकर तुम्हारे सेवक को दे दूंगा। फिर भी तुम्हारे पिता दाविद के कारण मैं यह तुम्हारे जीवन काल में नहीं करूंगा, बल्कि मैं यह तुम्हारे पुत्र के हाथ से छीन लूंगा। फिर भी मैं पूरा राज्य नहीं छीनूंगा, मैं एक गोत्र तुम्हारे पुत्र के लिए छोड़ दूंगा, मेरे सेवक दाविद और मेरे चुने गए नगर यरूशलेम के कारण। विरोधियों का उपद्रव। इसके बाद यहावे ने शलोमोन के लिए एक शत्रु खड़ा किया, एदोमी हदद, जो एदोम राजा के वंश से था। जब दाविद एदोम देश में थे और सेनापति योआब मरे हुओं को मिट्टी देने वहां गए हुए थे, उन्होंने एदोम देश के हर एक पुरुष का वध कर दिया था। योआब और इसराइल सेना वहां 6 महीने तक ठहरी रही थी, जब तक एदोम के हर एक पुरुष की हत्या ना कर दी गई। मगर हदद मिस्र देश को भाग चुका था, उसके साथ उसके पिता के एदोमी सेवक भी थे। उस समय हदद सिर्फ छोटा बालक ही था। उसने मिद्यान देश से चलना शुरू किया और पारान नामक स्थान पर आ पहुंचा। वहां से कुछ व्यक्तियों को अपने साथ लेकर वे मिस्र देश में फरो की शरण में पहुंच गया। फरो ने उसे एक घर और जमीन का टुकड़ा देकर उसके लिए नियमित भोजन की व्यवस्था भी कर दी। हदद फरो का प्रिय बन गया, यहां तक कि फरो ने उसका विवाह अपनी पत्नी तहपनीस की बहन से कर दिया। उससे उसके एक पुत्र पैदा हुआ, उसका नाम गेनुबात रखा। फरो के यहां रहते हुए ही इसने माता का दूध पीना छोड़ दिया था। गेनुबात राजमहल में फरो के पुत्रों के साथ ही रहता था। मिस्र में रहते हुए ही जब हदद ने यह सुना कि दाविद अब नहीं रहे और सेनापति योआब की भी मृत्यु हो गई है, हदद ने फरो से विनती की, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने देश में जा रहा हूं। मगर फरो ने उससे कहा, मेरे यहां ऐसी क्या कमी है कि तुम अपने देश को जाना चाह रहे हो? हदद ने उत्तर दिया, कमी तो कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी मुझे जाने दीजिए। परमेश्वर ने शलोमोन के विरुद्ध एक और शत्रु खड़ा कर दिया, एलियादा का पुत्र रेजोन, जो जोबा के राजा हाददेजर अपने स्वामी से बचकर भागा था। दाविद द्वारा की गई हत्याओं के बाद उसने अपने साथ अनेक व्यक्ति जुटा लिए और वह लूटमार करने वाले झुंड का मुखिया बन गया। ये सब दमिश्क जाकर वहां बस गए। वहां इन लोगों ने उसे दमिश्क का राजा बना दिया। शलोमोन के पूरे जीवन काल में वह इसराइल का शत्रु ही बना रहा। हदद ने इसराइल की हानि ही की थी। इसके अलावा रेजोन आराम का शासक को इसराइल से घोर नफरत थी। येरोबोआम का विद्रोह। जेरेदा नगर से एक एफ्राइम वासी नेबात के पुत्र येरोबाम ने भी, जो शलोमोन का ही सेवक था, जिसकी माता का नाम जेरुया था, जो विधवा थी, राजा के विरुद्ध सिर उठाया। राजा के विरुद्ध उसके विद्रोह का कारण यह था, जब शलोमोन मिल्लो को बनवा रहा था और जब उनके पिता दाविद के नगर की शहरपना की मरम्मत की जा रही थी, राजा ने ध्यान दिया कि येरोबोआम शक्तिशाली जवान था और राजा ने यह भी देखा कि वह मेहनती है, तो राजा ने उसे योसेफ वंशी दासों का मुखिया बना दिया। जब रेयोबोआम यरूशलेम से बाहर गया तो मार्ग में शिलोवासी भविष्यद्वक्ता अहिया से उसकी भेंट हो गई। अहिया ने नए कपड़े पहने हुए था, सिर्फ ये दोनों इस समय मैदान में खड़े हुए थे। अचानक ही अहिया ने अपने उस नए कपड़े को लिया जिसे वह पहने हुए थे और उसे फाड़ते हुए 12 भागों में बांट दिया। येरोबोआम से उन्होंने कहा, अपने लिए इनमें से 10 भाग उठा लो, क्योंकि यहावे इसराइल के परमेश्वर ने यह कहा है, यह देख लेना कि मैं शलोमोन के हाथ से छीनकर तुम्हें 10 गोत्रों का अधिकार दे दूंगा, मगर मेरे सेवक दाविद और यरूशलेम नगर के हित में उसके लिए एक गोत्र दे दिया जाएगा, जिसे मैंने इसराइल के सारे गोत्रों में से चुन लिया है, क्योंकि उसने मुझे भुलाकर सीदोनियों की देवी अश्तोरेत की, मोआब के देवता खेमोश की और अमोनियों के देवता मिलकाम की पूजा करना शुरू कर दिया है। उसने मेरे नियमों का पालन करना छोड़ दिया है। उसने अपने पिता दाविद के समान वह नहीं किया जो मेरी नज़रों में सही है, और ना ही उसने मेरी विधियों और नियमों का पालन ही किया है। यह सब होने पर भी मैं उससे सारा राज्य नहीं छीनूंगा। मैं अपने सेवक दाविद के कारण उसे आजीवन शासक बना रहने दूंगा, जो मेरा चुना हुआ था, जो मेरे आदेशों और नियमों का पालन करता रहा। मगर मैं यह राज्य उसके पुत्र से जरूर छीन लूंगा और ये 10 गोत्र तुम्हें दे दूंगा। हाँ, उसके पुत्र को मैं एक गोत्र दे दूंगा कि यरूशलेम में मेरे सामने मेरे सेवक दाविद का दीप हमेशा जलता रहे। यरूशलेम वह नगर है जहां मैंने अपनी महिमा करना सही समझा है। मैं तुम्हें प्रतिष्ठित करूंगा कि तुम अपनी इच्छा अनुसार शासन कर सकोगे। तुम इसराइल देश के राजा बन जाओगे, और यदि तुम मेरे आदेश को सुनकर उनका पालन करोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे और वही सब करोगे जो मेरी नज़रों में सही है, जैसा मेरे सेवक दाविद ने मेरे नियमों और आदेशों का पालन करने में किया था, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे वंश को स्थिर करूंगा, जैसा मैंने दाविद के साथ किया। तब मैं तुम्हें इसराइल की प्रभुता सौंप दूंगा। ऐसा करके मैं दाविद के वंशजों को पीड़ित तो करूंगा, मगर यह पीड़ा हमेशा के लिए नहीं होगी। यह सुन शलोमोन ने येरोबोआम की हत्या करने की कोशिश की, मगर येरोबोआम मिस्र के राजा शीशाक की शरण में चला गया और शलोमोन की मृत्यु तक वहीं रहा। शलोमोन की मृत्यु। शलोमोन की बाकी उपलब्धि और उसके द्वारा किए गए सारे सुधारों का ब्यौरा शलोमोन के काम नामक पुस्तक में लिखित है। सारे इसराइल पर शलोमोन ने यरूशलेम से 40 साल राज किया। शलोमोन अपने पूर्वजों के साथ हमेशा के लिए सो गए। उसका अंतिम संस्कार उसके पिता दाविद के नगर में किया गया। उसका स्थान पर उसका पुत्र रिहोबोआम राजा बना। राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 12। रिहोबोआम की मूर्खता। रिहोबोआम शेकेम नगर गया क्योंकि उसके राज अभिषेक के उद्देश्य से सारा इसराइल वहां इकट्ठा हुआ था। जब नेबात के पुत्र येरोबोआम ने यह सुना, जो इस समय मिस्र देश में ही रह रहा था, वह राजा शलोमोन से भागकर यहीं ठहरा हुआ था, लोगों ने संदेश भेजकर उसे बुलवा लिया। तब येरोबोआम और सारी इसराइली सभा अपनी बात रखने रिहोबोआम के पास गई। उन्होंने रिहोबोआम से कहा, आपके पिता ने हमारा जुआ बहुत ही भारी कर दिया था, अब तो आपके पिता द्वारा कराई गई मेहनत और इस भारी जुए को हल्का कर दीजिए, हम आपकी सेवा हमेशा करते रहेंगे। रिहोबोयाम ने उन्हें उत्तर दिया, अभी आप जाइए और 3 दिन के बाद आइए, तब मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। तब वे सब लौट गए। इसी समय राजा रिहोबोयाम ने उन पुरनियों से सलाह ली जो उसके पिता शलोमोन के जीवन भर उसके सेवक रहे थे। उसने पूछा, मेरे लिए आपकी क्या राय है, मैं इन लोगों को क्या उत्तर दूं? उन्होंने उसे उत्तर दिया, यदि आप आज इन लोगों के सामने सेवक की तरह बनकर उन्हें उत्तर देते हुए उनसे मीठी बातें करें तो वे आजीवन आपके सेवक बने रहेंगे। मगर रिहोबोयाम ने पुरनियों की इस सलाह को छोड़ दिया और जाकर उन युवाओं से सलाह ली जो उसी के साथ बड़े हुए थे और जो उसके सेवक थे। उसने उनसे पूछा, इन लोगों के लिए तुम्हारी राय क्या है जिन्होंने मुझसे विनती की, आपके पिता द्वारा हम पर रखा गया जुआ हल्का कर दीजिए। उसके साथ साथ पले बढ़े युवाओं ने उसे उत्तर दिया, जिन लोगों ने आपसे यह विनती की है, आपके पिता द्वारा हम पर रखे गए भारी जुए को हल्का कर दीजिए, उन्हें यह उत्तर दीजिए, मेरे हाथ की छोटी उंगली ही मेरे पिता की कमर से मोटी है। यदि मेरे पिता ने तुम पर भारी जुआ लादा था तो मैं उसे और भी अधिक भारी बना दूंगा। मेरे पिता ने तो तुम्हें नियंत्रण में रखने के लिए कोड़े इस्तेमाल किए थे, मगर मैं इसके लिए बिच्छू का इस्तेमाल करूंगा। जब यरोबोआम और सारी भीड़ 3 दिन बाद रिहोबोयाम के सामने आया, जैसा राजा द्वारा बताया गया था, मेरे पास 3 दिन के बाद आना। राजा ने पुरनियों की सलाह को छोड़कर लोगों को कठोर उत्तर दिया जो उन्हें युवाओं के द्वारा दी गई सलाह के अनुसार था। उसने कहा, मेरे पिता ने तुम्हारा जुआ भारी किया था तो मैं इसे और ज्यादा भारी कर दूंगा। मेरे पिता ने अगर तुम पर कोड़े चलाए थे तो मैं तुम पर बिच्छू डंक के समान कोड़े बरसाऊंगा। राजा ने लोगों की एक न सुनी, क्योंकि यह सारी बातें यहावे द्वारा तय की जा चुकी थी कि वह अपनी कही हुई बात पूरी करे जो उन्होंने नेबात के पुत्र यरोबोआम से शीलो के भविष्यद्वक्ता अहिया द्वारा की थी। जब सारे इसराइल के सामने यह बात आ गई कि राजा ने उनकी विनती की ओर ध्यान ही नहीं दिया है, उन्होंने राजा से यह कह दिया, क्या भाग है दाविद में हमारा, क्या मीरास है येशे पुत्र में हमारी। लौट जाओ अपने अपने तंबुओं में इसराइल, दाविद तुम अपने ही वंश को संभालते रहो। तब इसराइली अपने अपने तंबुओं को लौट गए। मगर यहूदिया प्रदेशवासी इसराइलियों पर रिहोबोयाम का शासन हो गया। राजा रिहोबोयाम ने अदोरम को, जो बेगार श्रमिकों का मुखिया था, इसराइलियों के पास भेजा। सारे इसराइलियों ने उसका पथराव किया कि उसकी हत्या हो गई। यह देख राजा रिहोबोयाम ने बिना देर किए रथ जुतवाया और वह यरूशलेम को भाग गया। इस प्रकार इसराइल राज्य आज तक दाविद के वंश के विरुद्ध विद्रोह की स्थिति में है। जब सारे इसराइल देश में यह मालूम चल गया कि यरोबोआम लौट आया है, उन्होंने उसे सभा में आमंत्रित किया और उसका सारे इसराइल के राजा के रूप में राज अभिषेक कर दिया। सिर्फ यहूदा गोत्र दाविद वंश के साथ रहा। जब रिहोबोयाम यरूशलेम लौटा, उसने सारे यहूदा और बिन्यामीन गोत्र को इकट्ठा किया। ये 180,000 योद्धा थे जिन्हें परख कर अलग किया गया था कि ये इसराइल वंश से युद्ध करे और शलोमोन के पुत्र रिहोबोयाम के राज्य को दोबारा उसे लौटा दे। मगर परमेश्वर के एक जन शेमाया को परमेश्वर का आदेश इन शब्दों में मिला, शलोमोन के पुत्र यहूदिया के राजा रिहोबोयाम से और यहूदा और बिन्यामीन के सभी गोत्रों से और बाकी सभी लोगों से जाकर यह कहो, यह यहावे का आदेश है, अपने इन संबंधियों से जो इसराइल के वंशज है युद्ध ना करना, तुम में से हर एक अपने अपने घर लौट जाए, क्योंकि यह स्थिति मेरे द्वारा उत्पन्न की गई है। तब उन्होंने यहावे के आदेश का पालन किया। यहावे के आदेश के अनुसार वे सब अपने अपने घर लौट गए। बछड़ों की सोने की मूर्तियां। यरोबोआम ने एफ्राइम के पहाड़ी इलाके में शेकेम नामक नगर को बसाया और वहीं रहने लगा। कुछ समय बाद उसे छोड़ उसने पनियल नामक स्थान को मजबूत किया। यरोबोआम ने विचार किया, अब तो राज्य दाविद वंश के पास लौट जाएगा, यदि मेरे प्रजाजन बलि चढ़ाने के उद्देश्य से यरूशलेम में यहावे के भवन को ही जाते रहेंगे, तो यह तय ही है कि उनका हृदय उनके स्वामी की ओर ही लगता जाएगा,
यहूदिया के राजा रिहोबोयाम की ओर, और ये लोग मेरी हत्या कर देंगे
और यहूदिया के राजा रिहोबोयाम की ओर फिर जाएंगे। सलाह मशविरा करने के बाद राजा ने सोने के दो बछड़े ढाले और लोगों के सामने घोषणा की, बहुत हो चुका तुम्हारा यरूशलेम जाना। इसराइल, यह देखो, तुम्हारे देवता ये है, ये ही है जो तुम्हें मिस्र देश से बाहर निकाल लाए हैं। इसके बाद उसने एक को तो बेथेल में और दूसरे को दान प्रदेश में प्रतिष्ठित किया। यह पाप साबित हुआ क्योंकि लोग उसकी उपासना करने दूर के दान प्रदेश तक जाने लगे। उसने पूजा स्थलों पर मंदिर बनवा दिए और सारी प्रजा में से ऐसे व्यक्तियों को पुरोहित चुन दिया जो लेवी के वंशज ना थे। तब यरोबोआम ने 8वें महीने के 15वें दिन एक पर्व घोषित कर दिया। यह वैसा ही पर्व था जो यहूदिया में मनाया जाता था। उसने बेथेल में वेदी पर उन बछड़ों के लिए जो स्वयं उसने गढ़ी थी बलियां चढ़ाई। उसने बेथेल में उन पूजा की जगहों पर पुरोहित चुन लिए जिन पूजा घरों को खुद उसी ने बनवाया था। वह बेथेल में अपनी ही बनाई हुई वेदी पर 8वें महीने के 15वें दिन गया और यह महीना और दिन खुद उसने अपनी ही बुद्धि से निश्चित किया था। इस प्रकार उसने इसराइली प्रजा के लिए यह उत्सव ठहराया था। फिर वह धूप जलाने वेदी पर गया।
राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 13। यहूदिया से परमेश्वर प्रतिनिधि आता है। जहां यरोबोअम धूप जलाने के लिए वेदी के पास खड़ा था, वहां ऐसा हुआ कि यहावे के आदेश पर परमेश्वर का एक दूत यहूदिया से बेथेल आया। यहावे के आदेश पर इस व्यक्ति ने वेदी से कहा, वेदी, ओ वेदी, यह संदेश यहावे का है, यह देखना कि दाविद के वंश से एक पुत्र पैदा होगा जिसका नाम होगा योशिया। वह तुझ पर पूजा गिरियों के लिए ठहराए गए पुरोहितों को बलि चढ़ा देगा, जो पुरोहित आज तुझ पर धूप जला रहे हैं। तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। उसने उसी दिन उन्हें एक चिन्ह भी दिया। यह वह चिन्ह है जो यहावे द्वारा दिया गया है, देख लेना कि यह वेदी फट जाएगी और इस पर की रखी चर्बी की राख नीचे आ पड़ेगी। जब राजा ने परमेश्वर के दूत के ये शब्द सुने जो उसने बेथेल में बनी वेदी के बारे में कहे थे, वेदी के पास खड़े यरोबोअम ने हाथ बढ़ाते हुए यह कहा, पकड़ लो उसे। परमेश्वर के दूत की ओर बढ़ाया हुआ उसका हाथ सूख चुका था, वह उसे दोबारा अपनी ओर खींच ना सका। दूसरी ओर वेदी भी फट चुकी थी और वेदी की चर्बी की राख भूमि पर जा पड़ी थी। परमेश्वर के दूत ने यहावे की ओर से यही भविष्यवाणी की थी। इस पर राजा ने परमेश्वर के दूत से विनती की, कृपया यहावे अपने परमेश्वर से दोहाई देते हुए यह विनती कीजिए कि मेरा यह हाथ पहले जैसा हो जाए। तब परमेश्वर के दूत ने यहावे की दोहाई दी और राजा का वह हाथ पहले के समान ही हो गया। तब राजा ने परमेश्वर के दूत से कहा, आप मेरे साथ मेरे घर आने की कृपा करें और वहां अपना जी ठंडा करें, मैं आपको उपहार भी दूंगा। परमेश्वर के दूत ने राजा को उत्तर दिया, यदि आप मुझे अपना आधा राज्य भी दे दे, मैं ना तो आपके घर आऊंगा और ना मैं इस स्थान पर खाना खाऊंगा और ना ही पानी पीऊंगा, क्योंकि यहावे की ओर से उसे यही आदेश मिला था, ना तुम वहां कुछ खाओगे पियोगे और ना उस मार्ग से लौटोगे जिससे तुम वहां गए थे।
इसलिए वह जिस मार्ग से बेथेल आया था
उससे नहीं बल्कि दूसरे मार्ग से घर लौट गया। बेथेल में एक बूढ़ा भविष्यद्वक्ता था। उसके पुत्रों ने लौटकर बेथेल में परमेश्वर के दूत से संबंधित सारी घटना का हाल सुना दिया और वे सारी बातें भी जो उसके द्वारा राजा के लिए की गई थी। उनके पिता ने उनसे पूछा, किस रास्ते से लौटा है वह? उसके पुत्रों ने उसे बता दिया कि परमेश्वर का वह दूत जो यहूदिया से आया था उसी रास्ते से लौटा था। उस बूढ़े भविष्यद्वक्ता ने अपने पुत्रों को आदेश दिया, मेरे लिए गधे पर काठी कसो। तब उन्होंने पिता के लिए गधे पर काठी कस दी और वह बूढ़ा भविष्यद्वक्ता उस पर बैठकर चला गया। उसने परमेश्वर के दूत का मार्ग लिया और उसे एक बांझ वृक्ष की छाया में बैठा पाया। उसने उससे पूछा, क्या तुम ही यहूदिया से आए हुए परमेश्वर के दूत हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ। तब उस प्राचीन भविष्यद्वक्ता ने उससे कहा, मेरे साथ मेरे घर चलकर भोजन कर लो। परमेश्वर के दूत ने उत्तर दिया, मैं आपके साथ नहीं जा सकता, ना तो मैं आपके साथ लौट सकता हूँ, ना ही मैं इस स्थान में आपके साथ कुछ खा पी सकता हूँ, क्योंकि यहावे की ओर से मुझे यह आदेश मिला है, तुम वहां ना तो कुछ खाओगे पियोगे और ना इस मार्ग से लौटोगे जिस मार्ग से तुम वहां गए थे। बूढ़े भविष्यद्वक्ता ने उसे उत्तर दिया, मैं भी तुम्हारे ही समान एक भविष्यद्वक्ता हूँ। यहावे की ओर से एक स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, उसे लौटाकर अपने घर ले आओ कि वह भोजन कर सके, मगर यह झूठ था। तब परमेश्वर का वह दूत उस वृद्ध भविष्यद्वक्ता के साथ नगर में लौट गया और उसने उसके घर पर भोजन किया और पानी पिया। जब वे भोजन के लिए बैठे ही थे, उस बूढ़े भविष्यद्वक्ता को जो उसे लौटा लाया था यहावे का संदेश मिला और उसने यहूदिया से आए हुए परमेश्वर के दूत से दृढ़तापूर्वक कहा, यह यहावे का संदेश है, इसलिए कि तुमने यहावे के आदेश का पालन नहीं किया है और उनके निर्देशों का पालन नहीं किया है जो यहावे तुम्हारे परमेश्वर ने तुम्हें दिए थे, बल्कि तुम लौट गए और तुमने उस स्थान में भोजन किया और पानी पिया है जिसके बारे में मैंने तुमसे कह दिया था, वहां ना तो भोजन करना और ना जल पीना, तुम्हारे शरीर को तुम्हारे पूर्वजों के साथ मिट्टी ना मिलेगी। जब परमेश्वर के दूत ने भोजन कर लिया और जल पी लिया, बूढ़े भविष्यद्वक्ता ने उस भविष्यद्वक्ता के लिए जिसे वह यात्रा से लौटा लाया था गधे पर काठी कसी। जब वह भविष्यद्वक्ता कुछ दूर पहुंचा, उसे मार्ग में एक शेर मिला जिसने उसे मार डाला। उसका शव रास्ते में ही पड़ा रहा। गधा उस शव के पास खड़ा रह गया, शेर भी शव के ही पास खड़ा रहा। वहां से जाते हुए यात्रियों ने यह दृश्य देखा, शव मार्ग पर पड़ा था और सिंह शव के निकट खड़ा हुआ था। उन्होंने उस नगर में जाकर यह समाचार दे दिया जहां वह बूढ़ा भविष्यद्वक्ता रहता था। जब उस भविष्यद्वक्ता ने जो उसे यात्रा से लौटा लाया था यह समाचार सुना, उसने यह घोषणा की, यह परमेश्वर का वही दूत है जिसने यहावे की आज्ञा टाली थी, इसलिए यहावे ने उसे शेर के अधिकार में कर दिया कि शेर उसे फाड़कर मार डाले। यह ठीक वैसा ही हुआ जैसा यहावे ने उससे कहा था। तब उसने अपने पुत्रों को आदेश दिया, मेरे जाने के लिए गधे पर काठी कसो। उन्होंने गधे पर काठी कस दी। बूढ़ा भविष्यद्वक्ता गया और पाया कि उसका शव मार्ग में पड़ा हुआ था और गधा और शेर शव के पास खड़े हुए थे। शेर ने ना तो शव को खाया था और ना ही उसने गधे को फाड़ डाला था। भविष्यद्वक्ता ने परमेश्वर के दूत के शव को गधे पर लादा और नगर लौट आया कि उसके लिए विलाप करके उसका अंतिम संस्कार किया जाए। उसने उसके शव को अपने लिए तैयार की गई कब्र में रखा। लोगों ने उसके लिए यह कहते हुए विलाप किया, आए मेरे भाई। उसे कब्र में रखने के बाद उसने अपने पुत्रों से कहा, जब मेरी मृत्यु होगी मुझे भी इसी कब्र में रखना जिसमें परमेश्वर का यह दूत रखा गया है। मेरी हड्डियां उसी की हड्डियों के पास रख देना, क्योंकि यह तो तय ही है कि वह सभी कुछ होगा जो यहावे के संदेश के अनुसार बेथेल की वेदी और शमरिया के नगरों में पूजा की सभी जगहों में बने सभी घरों के संबंध में उसने दृढ़तापूर्वक कहा था। यह सब होने पर भी यरोबोआम अपने गलत कामों से ना फिरा। उसने पूजा की जगहों के लिए अपनी सारी प्रजा में से पुरोहित चुने। जो कोई भी पुरोहित का पद चाहता था वह उसे पूजा की जगहों के पुरोहित होने के लिए अभिषिक्त कर देता था। यह नीति यरोबाम के परिवार के लिए पाप हो गई। यही यरोबोआम के वंश का पृथ्वी पर से विनाश का कारण हो गया। राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 14। यरोबोआम के लिए अप्रिय नबूवत। उसी समय यरोबोआम का पुत्र अबिय्याह बीमार हो गया यरोबोआम ने अपनी पत्नी से कहा, ऐसा भेष बदलो कि कोई भी तुम्हें पहचान ना सके कि तुम यरोबोआम की पत्नी हो, और तुम शिलो को चली जाओ जहां भविष्यद्वक्ता अहिया रहते हैं। यह वही भविष्यद्वक्ता है जिन्होंने मेरे विषय में यह भविष्यवाणी की थी, मैं ही इस प्रजा का राजा बन जाऊंगा। अपने साथ 10 रोटियां, कुछ टिक्कियां और एक कुप्पी शहद लेकर उनसे भेंट करने चली जाओ, वही तुम्हें बताएंगे कि बालक का क्या होगा। यरोबोआम की पत्नी ने ऐसा ही किया। वह तैयार हो शिलो नगर में अहिया के घर पर जा पहुंची। बूढ़ा होने के कारण अहिया की नजरें धुंधली पड़ चुकी थी और वह देख नहीं सकता था, मगर यहावे ने अहिया को पूर्व सूचित किया, यरोबोआम की पत्नी तुमसे अपने पुत्र की स्थिति के विषय में पूछताछ करने आ रही है। यह बालक अस्वस्थ है, तुम उसे ऐसा और ऐसा जवाब देना है। जब वह भविष्यद्वक्ता के निकट पहुंची, उसने अन्य स्त्री होने का बहाना किया। अहिया उसके पदचाप सुन रहे थे। जैसे ही वह द्वार पर पहुंची, अहिया ने पुकारते हुए कहा, श्रीमती यरोबोआम, भीतर आ जाइए, क्या लाभ है आपके वेश बदलने का। मुझे आपको अप्रिय समाचार देने का दायित्व सौंपा गया है। जाकर यरोबाम को सूचित कर दीजिए, यहावे इसराइल के परमेश्वर का यह संदेश है, मैंने सारी प्रजा में से तुम्हें चुनकर उन्नत किया, तुम्हें अपनी प्रजा का प्रधान नियुक्त किया और दाविद के वंश से राज्य छीनकर तुम्हें दे दिया है। फिर भी तुम मेरे सेवक दाविद के समान साबित ना हुए, जिसने मेरे आदेशों का पालन किया और पूरे मन से मेरा अनुसरण करता रहा, सिर्फ वही करता रहा जो मेरी दृष्टि में सही है। मगर तुमने तो ऐसी बुराई की है जो तुमसे पहले हुए उनसे भी बुरी है। तुमने अपने लिए पराये देवता बना लिए, धातु की मूर्तियां गढ़ ली और मेरे क्रोध को भड़का दिया। तुमने तो मुझे अपने ही पीछे फेंक दिया है। इसलिए मैं यरोबोआम के परिवार पर मुसीबत डाल दूंगा, मैं यरोबोआम के वंश से हर एक पुरुष को नाश कर दूंगा, चाहे वह इसराइल में बंधुआ हो या स्वतंत्र। मैं यरोबोआम के परिवार को उसी प्रकार भस्म कर दूंगा जिस प्रकार कोई गोबर को पूरी तरह भस्म कर फेंक देता है। यदि यरोबोआम के किसी भी संबंधी की मृत्यु नगर के भीतर होती है तो उसका शव कुत्ते खा जाएंगे। यदि किसी की मृत्यु खुले मैदान में होती है तो वह आकाश के पक्षियों का आहार हो जाएगा। यह यहावे का संदेश है। इसलिए अब उठो और अपने घर लौट जाओ, तुम्हारे नगर में प्रवेश करते ही बालक की मृत्यु हो जाएगी। पूरा इसराइल उसके लिए विलाप करेगा और फिर उसे गाड़ा जाएगा। सिर्फ वह अकेला होगा जिसे यरोबोआम के परिवार में कब्र मिलेगी, क्योंकि यहावे इसराइल के परमेश्वर ने सारे यरोबोआम के परिवार से सिर्फ उसी में कुछ भला पाया है। इसके अलावा आज ही यहावे अपने लिए इसराइल में से एक राजा पैदा करेंगे जो यरोबोआम के परिवार को आज ही हमेशा के लिए मिटा देगा। इसके बाद यहावे इसराइल पर वैसा ही वार करेंगे जैसा जल में सरकंडा। वह इस समृद्ध भूमि पर से इसराइल को उखाड़कर छोड़ेंगे, उस भूमि पर से जो उन्होंने उनके पूर्वजों को दी थी। वह उन्हें फरात नदी के पार तक बिखरा देंगे, क्योंकि उन्होंने अशेरा खंभे गढ़कर यहावे को क्रोधित कर दिया है। यरोबोआम द्वारा किए गए पापों के कारण यहावे इसराइल को छोड़ देंगे। वे पाप काम जो खुद यरोबोआम किए और जिनके द्वारा उसने इसराइल को पाप करने लिए उकसाया। तब यरोबोआम की पत्नी वहां से विदा हो गई और अपने नगर तीर्जा पहुंची। उसने अपने घर की डेवड़ी पर पैर रखा ही था कि उसका पुत्र मर गया। सारे इसराइल ने उसका अंतिम संस्कार किया, उसके लिए विलाप किया, ठीक जैसा यहावे ने अपने सेवक भविष्यद्वक्ता अहिया के द्वारा कहा गया था। यरोबोआम के बाकी काम, यानी उसने युद्ध कैसे किया और उसने किस प्रकार शासन किया, इनका ब्यौरा इसराइल के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में लिखा है। यरोबोआम का पूरा शासनकाल 22 साल का था। फिर वह अपने पूर्वजों के साथ हमेशा के लिए सो गया। उसकी जगह पर उसका पुत्र नादाब राजा बना। रीहोबोआम की यहूदिया पर नियुक्ति। इस समय यहूदिया का शासक था शलोमोन का पुत्र रीहोबोआम। जिस समय उसने शासन शुरू किया उसकी उम्र 41 साल की थी। यरूशलेम में उसने 17 साल शासन किया। यरूशलेम वह नगर है जिसे यहावे ने सारे इसराइल में से इसलिए चुना कि इसमें अपना नाम की प्रतिष्ठा करें। उसकी माता का नाम था नामहा, जो अम्मोनी थी। यहूदिया प्रदेश ने वह किया जो यहावे की नज़रों में गलत था। उन्होंने अपने पापों के द्वारा यहावे में इतनी जलन पैदा कर दी जितनी उनके किसी भी पूर्वज ने कभी ना की थी। उन्होंने भी अपने लिए पूजा की जगह हर एक ऊंची पहाड़ी और हर एक घने पेड़ के नीचे पूजा स्तंभ और अशेरा के खंभे बनवाए थे। देश में पुरुष गामियों के लिए पुरुष वेश्या भी मंदिरों में रखे गए थे। ये सब उन सारे घृणित कामों में संलग्न थे जो उन जातियों में किए जाते थे जिन्हें यहावे ने इसराइल के सामने से भगा दिया था। राजा यहोबोयाम के शासनकाल के 5वें साल में मिस्र के राजा शीशाक ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। उसने यहावे के भवन से और राजा का महल में से सारा कीमती सामान लूट लिया। वह सभी कुछ अपने साथ ले गया, यहां तक कि शलोमोन द्वारा गढ़ी गई सारी सोने की ढाले भी। तब राजा रिहोबोयाम ने उनकी जगह पर कांसे में गढ़ी गई ढाले वहां रख दी। इनकी जवाबदारी रिहोबोयाम ने राजघराने के पहरेदारों के प्रधानों को सौंप दी। तब रीति यह बन गई कि जब जब राजा यहावे के भवन को जाता था पहरेदार ये ढाले लेकर चलते थे और राजा के वहां से लौटने पर इन्हें पहरेदारों के कमरों में दोबारा रख दिया जाता था। रिहोबोयाम के बाकी काम और उसके सारे कृत्य यहूदिया के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। रिहोबोयाम और यरोबोआम हमेशा ही आपस में युद्ध करते रहे। रिहोबोयाम अपने पूर्वजों के समान हमेशा के लिए सो गया। उसे उसके पूर्वजों के साथ दाविद के नगर की कब्र में रखा गया। उसकी माता का नाम नामहा था, वह अम्मोनी थी। उसके स्थान पर उसका पुत्र अबियाम राजा बना। राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 15। यहूदिया पर अबियाम का शासन। नेबात के पुत्र यरोबोआम के शासनकाल के 18वें साल में अबियाम ने यहूदिया पर शासन करना शुरू किया। उसने यरूशलेम में 3 साल शासन किया। उसकी माता का नाम माखा था, वह अभी शालोम की पुत्री थी। उसने अपने पिता के जैसा ही चाल चलन रखा और वे ही वे सारे पाप किए जो अपने पिता ने किए। यहावे अपने परमेश्वर के प्रति उसका हृदय पूरी तरह समर्पित ना था, जैसा उसके पूर्वज दाविद का था। यह सब होने पर भी दाविद के कारण यहावे उसके परमेश्वर ने उसके लिए एक पुत्र पैदा कर उसके हित में यरूशलेम में एक दीप जला रखा और यरूशलेम को स्थिरता दी, क्योंकि दाविद ने वही किया था जो यहावे की दृष्टि में सही था। दाविद आजीवन यहावे द्वारा दिए गए आदेशों से नहीं हटे, सिर्फ हित्ती उरिया से संबंधित घटना के सिवाय। पूरे जीवन भर रिहोबोयाम और यरोबोआम के बीच युद्ध होता रहा। अबियाम द्वारा किए गए बाकी काम और वह सब जो उसने किया यहूदिया के राजाओं की इतिहास नामक पुस्तक में लिखी है। अबियाम और यरोबोआम में युद्ध होता रहा। अबियाम अपने पूर्वजों के साथ हमेशा के लिए सो गया और उसे उसके पूर्वजों के साथ दाविद के नगर की कब्र में रखा गया। उसके स्थान पर आसा राजा बना। यहूदिया पर आसा का शासन। राजा यरोबोआम के शासनकाल के 20वें साल में आसा ने यहूदिया पर शासन करना शुरू किया। उसने यरूशलेम में रहकर 41 साल तक शासन किया। उसकी दादी का नाम था माखा, जो अभी शालोम की पुत्री थी। आसा ने वह किया जो यहावे की दृष्टि में सही था, जैसा उसके मूल पुरुष दाविद ने किया था। उसने मंदिरों में से पुरुष वेश्याओं को देश से निकाल दिया और अपने पिता द्वारा गढ़ी गई सारी मूर्तियों को हटवा दिया। उसने अपनी दादी माखा को राजमाता पद से हटा दिया, क्योंकि उसने अशेरा की घृणित मूर्ति बनाकर रखी थी। आसा ने इस मूर्ति को काटकर उसे किद्रोन नदी तट पर राख बना डाला, मगर पूजा गिरियों को हटाया नहीं गया। फिर भी आसा का मन जीवन भर यहावे के लिए पूरी तरह सच्चा बना रहा। उसने यहावे के भवन में वे सारी पवित्र वस्तुएं लाकर रख दी, सोना, चांदी और बर्तन, जो उसके पिता और खुद उसके पास थे। आसा और इज़राइल के राजा बाशा के बीच उनके पूरे जीवन भर युद्ध चलता रहा। इज़राइल के राजा बाशा ने यहूदिया पर हमला कर दिया और उसने रामा नगर के चारों ओर किला बनवाया ताकि इज़राइल का कोई भी व्यक्ति इज़राइल की सीमा से बाहर ना जाए और यहूदिया के राजा आसा इस तरफ ना पहुंच सके। इसके बाद आसा ने यहावे के भवन में बाकी रह गए सोने और चांदी और राजा के भंडार में बचे हुए सोने और चांदी को लेकर अपने सेवकों को दिया और उन्हें दमिश्क निवासी हेजियोन के पोते ताब्रिम्मन के पुत्र बेन हदद के लिए यह कहते हुए भेज दिया, आपके और मेरे बीच एक वाचा बांधी जाए ठीक जैसी मेरे और आपके पिताओं के बीच थी। मैं उपहार के रूप में आपके लिए सोना और चांदी भेज रहा हूँ। आप इज़राइल के राजा बाशा से अपनी वाचा तोड़ दीजिए कि वह यहाँ से अपनी सेनाएं हटा ले। बेन हदद राजा आसा के प्रस्ताव से राजी हो गया। उसने इज़राइल राज्य के नगरों के विरुद्ध अपने सैन्य अधिकारी भेज दिए। उन्होंने इयोन, दान, बेथमाका के आबेल और पूरे किन्नेरेत को नफ्ताली प्रदेश सहित अपने अधीन कर लिया। जब बाशा को यह समाचार प्राप्त हुआ, सारा काम समाप्त कर दिया और वह खुद तिर्जा में रहता रहा। इसके बाद राजा आसा ने यहूदिया में सभी के लिए घोषणा की, किसी को छूट नहीं थी। सबने मिलकर राजा बाशा द्वारा लगाई निर्माण सामग्री, पत्थर और लकड़ी लेकर आसा द्वारा बनाए जा रहे बिन्यामीन और मिस्पा के गेबा में लगा दी। आसा द्वारा किए गए बाकी काम, उनका शौर्य और उनकी सारी उपलब्धियां और उसके द्वारा बसाए गए नगरों का ब्यौरा यहूदिया के राजाओं के इतिहास नामक पुस्तक में है। उसके बुढ़ापे में उसके पैर रोगग्रस्त हो गए थे। आसा अपने हमेशा के लिए सो गया और उसको उसके पूर्वजों के साथ दाविद के नगर की कब्र में रख दिया गया। उसके स्थान पर उसका पुत्र यहोशाफात राजा बना। इज़राइल पर नादाब का शासन। आसा के शासनकाल के दूसरे साल में यरोबोआम का पुत्र नादाब इज़राइल पर शासन करने लगा। इसने इज़राइल पर 2 साल तक शासन किया। उसने वही किया जो यहावे की दृष्टि में गलत था। उसका स्वभाव उसके पिता के समान ही था। नादाब ने भी इज़राइल से वही पाप करवाए जो उसके पिता ने उनसे करवाए थे। इसाखार वंश के अहिया के पुत्र बाशा ने नादाब के विरुद्ध साजिश रची और बाशा ने उसे फिलिस्तीनियों की सीमा में गिबथोन नामक स्थान पर मार गिराया, क्योंकि नादाब ने सारी इज़राइली सेना लेकर गिबथोन को घेर रखा था। यह यहूदिया के राजा आसा के शासन का 3रा साल था जब बाशा ने नादाब की हत्या की और उसकी जगह पर राजा हो गया। जैसे ही उसने राजपद संभाला, उसने यरोबोआम के सारे वंश का नाश कर दिया, ठीक वैसे ही जैसे यहावे ने शिलोन वासी अपने सेवक अहिया के द्वारा भविष्यवाणी की थी। उसने यरोबोआम के परिवार में एक व्यक्ति भी जीवित ना छोड़ा। उन पापों के कारण जो यरोबोआम ने किए और उनके लिए जो उसने इज़राइल को करने के लिए उकसाया, उसने यहावे इज़राइल के परमेश्वर के क्रोध को भड़काया। नादाब द्वारा किए गए बाकी काम और जो उसके काल घटी घटनाएं इज़राइल के राजाओं के इतिहास नामक पुस्तक में लिखा है। आसा और इज़राइल के राजा बाशा के बीच उनके पूरे जीवन भर युद्ध चलता रहा। इज़राइल पर बाशा का शासन। यहूदिया के राजा आसा के शासन के 3रे साल में तिर्जा नगर में अहिया के पुत्र बाशा ने सारे इज़राइल पर शासन करना शुरू किया। उसने 24 साल शासन किया। उसने वह सब किया जो यहावे की दृष्टि में गलत था। उसका आचरण और उसके पाप यरोबोआम के समान थे जो उसने इज़राइल को भी करने के लिए उकसाया। राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 16। अनानी के पुत्र येहू के पास बाशा के विरुद्ध यहावे का यह संदेश आया, इसलिए कि मैंने धूल से उठाकर तुम्हें प्रतिष्ठित किया और अपनी प्रजा इज़राइल का मुखिया चुना, मगर तुम्हारा स्वभाव यरोबोआम के समान ही रहा है। तुमने मेरी प्रजा इज़राइल को पाप की ओर उकसाया और उनके पाप के द्वारा तुमने मेरे क्रोध को भड़काया है। अब देख लेना कि मैं बाशा के वंश को मिटा दूंगा और तुम्हारे वंश को नेबात के पुत्र यरोबोआम के समान कर दूंगा। यदि बाशा के किसी भी संबंधी की मृत्यु नगर के भीतर होती है तो उसका शव कुत्तों का भोजन हो जाएगा। यदि किसी की मृत्यु खुले मैदान में होती है तो वह आकाश के पक्षियों का भोजन हो जाएगा। बाशा की बाकी उपलब्धियां, उसके द्वारा किए गए काम और उसके शौर्य का ब्यौरा इज़राइल के राजाओं की इतिहास नामक पुस्तक में है। बाशा की मृत्यु हुई और वह तिर्जा नगर में गाड़ा गया और उसके स्थान पर उसका पुत्र एला राजा बना। इसके अलावा हनानी के पुत्र भविष्यद्वक्ता येहू के द्वारा यहावे का संदेश बाशा और उसके सारे परिवार के विरुद्ध ये दोनों ही कारणों से भेजा गया। उसने यरोबोआम के परिवार के समान वे काम करके जो यहावे की दृष्टि में गलत थे, यहावे का क्रोध भड़काया और दूसरा उसने यरोबोआम के वंश को खत्म कर डाला। इज़राइल पर एला का शासन। यहूदिया पर राजा आसा के शासन के 26वें साल में बाशा के पुत्र एला ने इज़राइल पर तिर्जा नगर में रहते हुए अपना शासन शुरू किया। उसने 2 साल शासन किया, किंतु उसके सेवक जिमरी ने, जो आधी रथ सेना का मुखिया था, उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। जब एला तिर्जा में राजघराने के अधिकारी अर्जा के घर में नशे में था, जिमरी ने आकर उस पर वार कर उसकी हत्या कर दी और उसके स्थान पर शासन करने लगा। यह यहूदिया के राजा आसा के शासनकाल के 27वें साल की घटना है। जब उसने शासन शुरू किया, सिंहासन पर बैठते ही उसने बाशा के परिवार के सारे सदस्यों की हत्या कर दी। उसने परिवार और मित्रों के परिवारों में एक भी पुरुष को जीवित ना छोड़ा। इस प्रकार जिमरी ने यहावे के संदेश के अनुसार, जो उन्होंने भविष्यद्वक्ता येहू के द्वारा बाशा के विरुद्ध कहा था, बाशा के पूरे परिवार को खत्म कर दिया। यह सब उन पापों के कारण हुआ जो बाशा और उसके पुत्र एला ने किए और इज़राइल को भी यह पाप करने के लिए प्रेरित किया, और इसलिए भी कि उन्होंने यहावे इज़राइल के परमेश्वर को अपने बेकार के कामों द्वारा क्रोधित किया। एला की बाकी उपलब्धियों का और उसके सारे कामों का ब्यौरा इज़राइल के राजाओं के इतिहास नामक पुस्तक में किया गया है। इज़राइल पर जिमरी का शासन। यहूदिया के राजा आसा के शासन के 27वें साल में तिर्जा नगर में जिमरी ने 7 दिन शासन किया। सेना ने गिबथोन नगर की घेराबंदी की, जो फिलिस्तीनियों के अधीन में एक नगर था। नगर की घेराबंदी की हुई सेना ने किसी को यह कहते हुए सुना, जिमरी ने षड्यंत्र रचा है और उसने राजा की हत्या कर दी है। यह सुन सारे इज़राइल ने ओम्री को सेनापति बना दिया, यानी उसे उस दिन छावनी में ही इज़राइल का राजा घोषित कर दिया गया। इज़राइली सेना ने ओम्री के साथ गिबथोन से कूच किया और तिर्जा नगर को अधीन कर लिया। जब जिमरी ने देखा कि नगर उसके हाथ से निकल चुका है, वह राजघराने के गढ़ में चला गया और राजघराने में आग लगा ली, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। यह उसके पापों के कारण हुआ। उसने वही किया जो यहावे की दृष्टि में गलत था। यरोबोआम के समान बुरी चाल चलने के द्वारा, जिसमें उसने इज़राइल को पाप करने के लिए उकसाया था, जिमरी के बाकी कामों का ब्यौरा और उसके द्वारा रचे गए षड्यंत्र का वर्णन इज़राइल के राजाओं के इतिहास नामक पुस्तक में किया गया है। इज़राइल पर ओम्री का शासन। इज़राइली प्रजा 2 भागों में बट गई। आधे लोग गिनात के पुत्र तिबनी की तरफ हो गए कि उसे राजा बना दे और आधे ओम्री के समर्थकों ने गिनात के पुत्र तिबनी के समर्थकों को हरा दिया। इसमें तिबनी की मृत्यु भी हो गई और ओम्री राजा बन गया। यहूदिया के राजा आसा के शासनकाल के 31वें साल में ओम्री ने इज़राइल पर शासन शुरू किया। इनमें से उसने 6 साल तिर्जा नगर में शासन किया। उसने 34 किलो चांदी देकर शेमेर नामक व्यक्ति से शमरिया की पहाड़ी खरीद ली। उसने पहाड़ी को गढ़ में बदल दिया। उसने इस जमीन के मालिक शेमेर के नाम पर इस नगर का नाम शमरिया रख दिया। ओमरी ने वे काम किए जो यहावे की दृष्टि में गलत थे। ये काम उन सभी की तुलना में अधिक बुरे थे जो ओमरी के पहले के राजाओं ने किए थे। उसका स्वभाव हर प्रकार से नेबात के पुत्र यरोबोआम समान था। वे पाप उसने इसराइली प्रजा को करने के लिए भी उकसाया। उन्होंने यहावे इसराइल के परमेश्वर को अपनी दुष्टता के द्वारा क्रोधित किया। ओमरी द्वारा किए गए बाकी कामों और उसके द्वारा दिखाए शौर्य का ब्यौरा इसराइल के राजाओं के इतिहास नामक पुस्तक में किया गया है। ओमरी की मृत्यु हुई और उसे शमरिया में गाड़ा गया। उसकी जगह पर उसका पुत्र अहाब राजा बना। इसराइल पर अहाब का शासन। यहूदिया के राजा आसा के शासनकाल के 38वें साल में ओमरी के पुत्र अहाब ने इसराइल पर शासन शुरू किया। अहाब ने इसराइल पर 22 साल शासन किया। ओमरी के पुत्र अहाब ने वही सब किया जो यहावे की दृष्टि में गलत थे। यह सब उन सब से कहीं अधिक गलत था जो उसके पहले के राजाओं द्वारा किया गया था। इसके अलावा मानो इतना काफी ना था कि उसने वे ही पाप किए जो नेबात के पुत्र यरोबोआम द्वारा किए गए थे। उसने सीदोनियों के राजा एथबाल की पुत्री इजेबेल से विवाह कर लिया और फिर वह जाकर बाल की पूजा अर्चना करने लगा। शमरिया में उसने बाल के लिए एक मंदिर बनवाया। इस मंदिर में उसने बाल के लिए एक वेदी भी बनवाई। अहाब ने अशेरा के खंभे की भी स्थापना की। यह सब करके अहाब ने यहावे इसराइल के परमेश्वर को उन सब की अपेक्षा अधिक क्रोधित किया जो उसके पहले के राजाओं ने किया था। इन्हीं दिनों में बेथेल निवासी हियेल ने यरीखो नगर को बनाना शुरू किया और जब उसने इसकी नींव डाली तो उसके पहलौठे पुत्र अबिराम की मृत्यु हो गई। और जब वह नगर फाटक लगवा रहा था उसके छोटे पुत्र सेगूब की मृत्यु हो गई। यह यहावे के वचन के अनुसार था जो उन्होंने नून के पुत्र यहोशू द्वारा बताया था।
राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 17। एलिया द्वारा सूखे की पूर्वावक्ति। गिलाद क्षेत्र के तिशबे नगर के निवासी एलिया ने अहाब से कहा, इसराइल के जीवित परमेश्वर यहावे की शपथ, मैं जिनका सेवक हूँ, आने वाले सालों में बिना मेरे कहे ना तो ओस पड़ेगी और ना ही बारिश होगी। कोवे द्वारा एलिया खिलाया जाना। तब उसे यहावे का यह संदेश मिला, यहां से जाओ और पूर्व में जाकर केरीत नाले के क्षेत्र में जो यर्दन के पूर्व में है छिप जाओ। तुम्हें नाले का जल पीना होगा। मैंने कोवों को आदेश दिया है कि वे वहां तुम्हारे भोजन का इंतजाम करें। तब एलिया ने जाकर यहावे के आदेश का पालन किया और यर्दन नदी के पूर्व में केरीत नाले के पास रहने लगा। सुबह सुबह कोवे उनके लिए रोटी और मांस ले आते थे, वैसे ही शाम को भी। ज़रफ़्ता की विधवा। कुछ समय बाद वह नाला सूख गया क्योंकि उस देश में बारिश हुई ही नहीं थी। एलिया को यहावे से यह आदेश प्राप्त हुआ, उठो सीदोन प्रदेश के ज़रफ़्ता नगर को जाओ और वहीं रहो। और सुनो, मैंने वहां एक विधवा को आदेश दिया है कि वह तुम्हारे भोजन की व्यवस्था करे। तब एलिया ज़रफ़्ता चले गए। जब वह नगर द्वार के पास पहुंचे, उन्होंने एक विधवा को ईंधन लकड़ी इकट्ठी करते देखा। उन्होंने पुकार कर उससे विनती की, पीने के लिए एक बर्तन में थोड़ा सा जल ले आओ। जब वह जल लेने जा ही रही थी, एलिया ने दोबारा पुकार कर उससे विनती की, मेरे लिए रोटी का एक टुकड़ा भी लेते आना। उस स्त्री ने उन्हें उत्तर दिया, यहावे आपके जीवित परमेश्वर की शपथ, मैंने कुछ भी नहीं पकाया है। घर पर एक बर्तन में मुट्ठी भर आटा और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल ही बाकी रह गया है। अब मैं यहां थोड़ी सी लकड़ियां बीन रही थी कि जाकर कुछ पका लूंगी कि मैं और मेरा पुत्र इसे खाए, उसके बाद मृत्यु तो तय ही है। एलिया ने उससे कहा, डरो मत, वही करो जैसा अभी तुमसे कहा है। हाँ, मेरे लिए एक छोटी रोटी बनाकर ले आना, इसके बाद अपने लिए और अपने पुत्र के लिए भी बना लेना। यहावे इसराइल के परमेश्वर का यह संदेश है, उस बर्तन का आटा खत्म ना होगा
और तेल की वह कुप्पी उस दिन तक खाली ना होगी जब तक यहावे पृथ्वी पर बारिश ना भेज दे। वह गई और ठीक वैसा ही किया जैसा एलिया ने कहा था। एलिया और उस स्त्री का परिवार इससे अनेक दिन तक भोजन करते रहे। उस बर्तन में ना आटा खत्म हुआ और ना ही तेल की वह कुप्पी कभी खाली हुई। एलिया द्वारा दिए गए यहावे के संदेश के अनुसार कुछ समय बाद जो उस घर की स्वामिनी का पुत्र बीमार हो गया, उसका रोग ऐसा बढ़ गया था कि उसका सांस लेना बंद हो गया। उस स्त्री ने एलिया से कहा, परमेश्वर के दूत, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है? आपके यहाँ आने का उद्देश्य यह है कि मुझे मेरा पाप याद कराया जाए और मेरे पुत्र के प्राण ले लिए जाए। एलिया ने उससे कहा, अपना पुत्र मुझे दो। यह कहते हुए उन्होंने उसके पुत्र को उसके हाथों से ले लिया और उसे उसी ऊपरी कमरे में ले गए जहां वह ठहरे हुए थे और उसी बिछोने पर लिटा दिया जिस पर वह सोते थे। उन्होंने यहावे को पुकारते हुए कहा, यहावे मेरे परमेश्वर, क्या इस विधवा पर जिसके यहां मैंने आसरा लिया है, क्या यह विपत्ति आप ही के द्वारा लाई गई है कि उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है? यह कहकर वह बालक पर तीन बार पसरे और यहावे की दोहाई देते हुए कहा, यहावे मेरे परमेश्वर, इस बालक के प्राण उसमें लौटा दीजिए। यहावे ने एलिया की दोहाई सुन ली, बालक के प्राण उसमें लौट आए और वह जीवित हो गया। एलिया बालक को लेकर ऊपरी कमरे से घर में आ गए और उसे उसकी माता को सौंप दिया और उससे कहा, देखो तुम्हारा पुत्र जीवित है। यह देख वह स्त्री एलिया से कहने लगी, अब मैं यह जान गई हूं कि आप परमेश्वर के दूत हैं और आपके मुख से निकला हुआ यहावे का संदेश सच है। राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 18। एलिया से ओबद्या की भेंट। एक लंबे समय के बाद तीसरे साल में एलिया को यहावे का यह आदेश प्राप्त हुआ, जाओ स्वयं को अहाब के सामने पेश करो, मैं पृथ्वी पर बारिश भेज रहा हूं। तब एलिया अपने आप को अहाब की उपस्थिति में प्रस्तुत करने चले गए। इस समय शमरिया में अकाल बहुत ही भारी था। अहाब ने ओबद्या को बुलवाया। ओबद्या यहावे का बड़ा भक्त था। वास्तव में जब इजेबेल ने यहावे के भविष्यद्वक्ताओं को मारना शुरू किया था, ओबद्या ने 100 भविष्यद्वक्ताओं को 50-50 करके गुफा में छिपा रखा था और वह उनके लिए भोजन और जल का प्रबंध करते रहे थे। अहाब ने ओबद्या से कहा, सारे देश में जाकर जल के स्रोतों और घाटियों की खोज करो, संभव है हमें हमारे घोड़ों और खच्चरों के लिए चारा मिल ही जाए और उनके प्राण बच जाए, इस प्रकार हमारे पशु नाश होने से बच जाएंगे। इसके लिए अहाब और ओबद्या ने सारे देश को दो भागों में बांट लिया। अहाब एक दिशा में चला गया और ओबद्या अकेले दूसरी दिशा में। जब ओबद्या मार्ग में ही थे कि उनकी भेंट एलिया से हो गई। ओबद्या ने उन्हें पहचान लिया। भूमि पर मुख के बल होकर उन्होंने एलिया से कहा, क्या आप ही मेरे स्वामी एलिया है? एलिया ने उत्तर दिया, हाँ, जाकर अपने स्वामी को सूचित करो, देखिए एलिया आ गया है। ओबद्या ने उन्हें उत्तर दिया, मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया है जो आप मृत्यु दंड के लिए मुझे अहाब के हाथों में सौंप रहे हैं? यहावे आपके जीवित परमेश्वर की शपथ, ना तो कोई ऐसा देश है ना ऐसा राष्ट्र जहां मेरे स्वामी ने आपको खोजने किसी को ना भेजा हो। और जब उन्हें यह सूचना दी गई, एलिया तो यहां भी नहीं है, वह उस देश और राष्ट्र से शपथ खिलाई कि खोजने पर भी उन्हें आप नहीं मिले, और यहां आपका आदेश है, जाकर अपने स्वामी को बताओ, देखिए यहां है एलिया। मैं जैसे ही यहां आपको छोड़कर जाऊंगा, यहावे के आत्मा आपको ना जाने कहां ले जाएंगे, और जब मैं अहाब को सूचना दूंगा और वह आपको यहां नहीं पाएंगे, वह तो मुझे मृत्यु दंड दे देंगे, जबकि मैं आपका सेवक बचपन से यहावे के लिए भय रखता आया हूं। क्या मेरे स्वामी को इस विषय में बताया नहीं गया कि जब इजेबेल ने यहावे के भविष्यद्वक्ताओं की हत्या कर दी थी, मैंने उस स्थिति में क्या किया था, मैंने कैसे यहावे के 100 भविष्यद्वक्ताओं को 50-50 करके गुफा में छिपा दिया था और उनके लिए भोजन और जल की व्यवस्था की थी। और अब आप आदेश दे रहे हैं, जाकर अपने स्वामी को सूचना दो, देखिए यहां है एलिया, अहाब तो जरूर मेरी हत्या कर देंगे। एलिया ने उन्हें उत्तर दिया, मैं जिनका सेवक हूं उस जीवित सेनाओं के यहावे की शपथ, आज मैं निश्चित ही अपने आप को अहाब के सामने प्रस्तुत करूंगा। कार्मेल पर्वत पर परमेश्वर और बाल। तब ओबद्या अहाब से भेंट करने चले गए और उन्हें यह सूचना दे दी, अहाब एलिया से मिलने चला। एलिया को देखते ही अहाब कह उठा, अच्छा तुम ही हो इज़राइल के सताने वाले। एलिया ने उत्तर दिया, सताने वाला मैं नहीं, आप और आपके पिता का परिवार है, आप है जिन्होंने यहावे के आदेशों को टाला है और बाल देवताओं का अनुसरण किया है। इसलिए अब मेरे सामने कार्मेल पर्वत पर सारे इज़राइल को इकट्ठा होने के लिए आदेश भेजिए। इसके अलावा बाल के 450 और अशेरा के 400 भविष्य वक्ताओं को भी बुलाइए, जो इजेबेल की मेज पर भोजन करते हैं। तब अहाब ने सारे इज़राइल और भविष्य वक्ताओं को कार्मेल पर्वत पर इकट्ठा होने का आदेश दिया। एलिया ने भीड़ के निकट आकर कहा, दो मतों के बीच तुम लोग और कब तक डगमगाते रहोगे? यदि यहावे ही परमेश्वर है तो उनका अनुसरण करो, और अगर बाल तो उसका। इसके उत्तर में लोग एक शब्द तक ना कह सके। तब एलिया ने भीड़ को कहा, सिर्फ मैं यहावे का भविष्यद्वक्ता बाकी रह गया हूं, मगर बाल के भविष्यद्वक्ता 450 व्यक्ति हैं। हमें 2 बछड़े दिए जाए, उन्हें अपने लिए बछड़ा चुनने दिया जाए, वे उसके टुकड़े कर लकड़ी पर सजा दे, मगर लकड़ी में आग ना लगाई जाए। मैं भी दूसरे बछड़े को तैयार कर लकड़ी पर सजाऊंगा, मगर उसमें आग ना लगाऊंगा। तुम लोग अपने देवता की दोहाई देना और मैं यहावे की दोहाई दूंगा, परमेश्वर वही होगा जो आग के द्वारा उत्तर देगा। भीड़ ने एक स्वर में उत्तर दिया, अच्छा विचार है यह। एलिया ने बाल के भविष्यद्वक्ताओं के सामने प्रस्ताव रखा, अपने लिए एक बछड़ा चुन लो और पहले तुम इसे तैयार करो, क्योंकि तुम लोग गिनती में अधिक हो। अपने देवता की दोहाई दो, मगर उसमें आग ना लगाना। उन्होंने उन्हें दिए गए बछड़े को लेकर उसे बलि के लिए तैयार किया और उन्होंने बाल को बलि देनी शुरू की, और सुबह से दोपहर तक वे यह कहकर दोहाई देते रहे, हे बाल हमारी सुनो। किंतु ना तो कोई आवाज ही सुनी गई और ना किसी से कोई उत्तर ही मिला। वे अपनी बनाई हुई वेदी के आसपास उछलते कूदते रहे। दोपहर के समय एलिया ने उनका मजाक उड़ाकर कहा, थोड़ा ऊंची आवाज में पुकारो, वह देवता है, हो सकता है वह ध्यान मग्न होगा, या वह शोच के लिए गया होगा, या यह भी संभव है कि वह यात्रा पर हो, या वह गहरी नींद में हो जिसे जगाना जरूरी हो गया है। तब वे ऊंची आवाज में चिल्लाते हुए अपनी प्रथा के अनुसार तलवारों और बर्छियों से अपने आप को छेदने लगे, जिससे उनकी देह लहूलुहान हो गई। दोपहर के बाद वे संध्या बलि तक आवेश में पागलों जैसे बड़बड़ाते रहे, मगर कहीं से कोई आवाज सुनाई नहीं दी, ना किसी ने उत्तर दिया, ना किसी ने इनकी ओर ध्यान दिया। तब सभी लोगों को एलिया ने कहा, मेरे पास आओ। सभी उनके पास आ गए। एलिया ने यहावे की वेदी की मरम्मत की थी, जो इस समय टूटी फूटी थी। एलिया ने जिस याकोब से यहावे का यह वादा था, तुम्हारा नाम इज़राइल होगा, उस याकोब के पुत्रों के गोत्रों की गिनती के अनुसार 12 पत्थर इकट्ठे किए थे। एलिया ने इन 12 पत्थरों को लेकर यहावे के सम्मान में एक वेदी बनाई। इसके बाद उन्होंने वेदी के चारों ओर ऐसी गहरी नाली खोद दी जिसमें लगभग 11 किलो बीज समा सकता था। फिर उन्होंने लकड़ी काटकर वेदी पर सजाकर रख दी और बछड़े को टुकड़े टुकड़े कर लकड़ियों पर सजा दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें आदेश दिया, 4 घड़े जल से भरकर सारा जल होमबलि और लकड़ियों पर उंडेल दो। फिर उन्होंने कहा, यही एक बार फिर करो। उन्होंने वैसा ही किया। फिर एलिया ने कहा, यही एक बार फिर करो। उन्होंने यह सब तीसरी बार भी किया। जल वेदी के चारों ओर बह निकला और नालियां तक जल से भर गई। शाम की बलि चढ़ाने के समय भविष्यद्वक्ता एलिया ने वेदी के निकट आकर यह दोहाई दी, यहावे अब्राहम यित्साहक और याकूब के परमेश्वर, आज यह सबको पता चल जाए कि इज़राइल देश में परमेश्वर सिर्फ आप ही है, और यह भी कि मैं आपका सेवक हूँ और यह सब मैंने सिर्फ आपके ही आदेश पर किया है। यहावे मुझे उत्तर दीजिए कि ये लोग जान जाए कि आप यहावे ही परमेश्वर हैं और आपने ही उनके हृदय अपनी ओर दोबारा फेर लिए हैं। यह पूरा होते ही यहावे द्वारा भेजी गई आग गिरी, उससे होमबलि, लकड़ियां, पत्थर और धूल सभी कुछ भस्म हो गया और आग नाली में भरा जल चट कर गई। जब उन सब ने यह सब देखा, वे मुंह के बल जमीन पर गिरकर यह स्वीकारने लगे, यहावे ही परमेश्वर है, यहावे ही परमेश्वर है। एलिया ने उन्हें आदेश दिया, बाल के भविष्यवक्ताओं को पकड़ लो, एक भी बचने ना पाए। उन्होंने उन्हें पकड़ लिया, एलिया उन्हें किशोन नाले पर ले गए और वहां उन सबको मार दिया। एलिया ने अहाब से कहा, उठिए और भोजन कर लीजिए, मुझे मूसलाधार बारिश की आवाज सुनाई दे रही है। तब अहाब भोजन करने चला गया, एलिया कार्मेल पर्वत के शिखर पर चले गए। उन्होंने भूमि की ओर झुककर अपने चेहरों को घुटनों में छिपा लिया और अपने सेवक को आदेश दिया, जाकर समुद्र की दिशा में देखते रहो। उसने जाकर देखा और सूचना दी, वहां तो कुछ भी नहीं है। एलिया ने यह आदेश 7 बार दिया, जाकर फिर देखो। 7वीं बार सेवक ने सूचना दी, देखिए देखिए, मनुष्य की बाह के समान बादल का एक छोटा टुकड़ा समुद्र की सतह से उठ रहा है। एलिया ने सेवक को आदेश दिया, जाकर अहाब से कहो, अपना रथ तैयार कर पर्वत से नीचे उतर जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आप बारिश में घिर जाए। कुछ ही देर बाद आकाश बादलों से काला हो गया, क्योंकि हवा बहने लगी थी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। अहाब रथ पर यज्रील चला गया। यहावे की कृपा दृष्टि में एलिया ने ऐसा बल पाया कि उन्होंने अपने ढीले कपड़े समेटे और कमर कसकर दौड़ते हुए अहाब के रथ से आगे निकलकर यज्रील तक पहुंच गए।
राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 19। एलिया का इजेबेल से डरकर भागना। अहाब ने एलिया के सारे कामों का वर्णन इजेबेल को जा सुनाया, कि किस प्रकार उसने बाल के सारे भविष्यवक्ताओं को तलवार से घात कर दिया था। इस पर इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा यह संदेश भेज दिया, अगर कल इस समय तक मैं तुम्हारा जीवन उन भविष्यवक्ताओं में से एक के जीवन के समान ना बना दूं, तो देवता मेरे साथ ऐसा ही बल्कि इससे भी अधिक करे। यह सुन एलिया इतने डर गए कि वह अपने प्राण लेकर भागे। वह भागते हुए यहूदिया के पेशरबा नगर जा पहुंचे। उन्होंने अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया और वह खुद एक दिन की यात्रा कर बंजर भूमि में जा पहुंचे, जहां वह एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां उन्होंने इन शब्दों में अपनी मृत्यु की प्रार्थना की, यहावे अब तो बहुत हो चुका, मेरे प्राण ले लीजिए, मुझ में मेरे पूर्वजों की तुलना में कुछ भी अच्छा नहीं है। वह उस झाऊ के पेड़ के नीचे लेट गए और वहीं सो गए। एक स्वर्गदूत वहां आया और उन्हें छूकर उनसे कहा, उठिए भोजन कर लीजिए। उन्होंने देखा कि उनके सिर के पास रोटी रखी थी जो गर्म पत्थर पर पकाई हुई थी, और वहीं एक बर्तन में पानी भी रखा था। उन्होंने भोजन किया, जल पिया और दोबारा लेट गए। यहावे का दूत दूसरी बार उनके पास प्रकट हुआ, उन्हें छुआ और उनसे कहा, उठिए भोजन कीजिए, आपको एक लंबी यात्रा करनी है। एलिया उठे, उन्होंने भोजन किया, जल पिया और उसी भोजन से बल पाकर 40 दिन और 40 रात लगातार चलते चलते वह परमेश्वर के पर्वत होरेब पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने एक गुफा में शरण ली। एलिया से यहावे की बातचीत। उनके लिए वहां यहावे का भेजा यह संदेश मिला, तुम यहां क्या कर रहे हो एलिया? एलिया ने उत्तर दिया,
मैं सर्वशक्तिमान यहावे परमेश्वर के लिए बहुत ही उत्साही रहा हूँ, मगर इसराइलियों ने आपकी वाचा को त्याग दिया है, आपकी वेदियां गिरा दी है और तलवार से आपके भविष्यवक्ताओं को मार दिया है, और मैं बाकी रह गया हूँ। अब वे मेरे प्राणों के खोजी हैं कि वे उन्हें भी ले ले। उन्होंने आदेश दिया, बाहर निकलकर पर्वत पर यहावे के सामने खड़े हो जाओ, यहावे वहां से होकर अभी निकल रहे हैं। तब यहावे के आगे आगे प्रचंड आंधी ने पहाड़ को हिला दिया, चट्टाने तड़क गई, मगर यहावे की उपस्थिति वायु में ना थी। प्रचंड आंधी के बाद एक भूकंप आया, मगर यहावे की उपस्थिति भूकंप में भी ना थी। भूकंप के बाद आग बरसी, मगर यहावे की उपस्थिति आग में भी ना थी। आग के बाद एक धीमी सी आवाज। जब एलिया ने यह सुना, उसने अपने वस्त्र से अपना मुख ढांप लिया। वह गुफा से बाहर निकल गुफा के द्वार पर खड़े हो गए। तब उन्हें एक आवाज सुनाई दी, एलिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एलिया ने उत्तर दिया, मैं सर्वशक्तिमान यहावे परमेश्वर के लिए बहुत ही उत्साही रहा हूँ, मगर इसराइलियों ने आपकी वाचा को त्याग दिया है, आपकी वेदियां गिरा दी हैं और तलवार से आपके भविष्यवक्ताओं को मार दिया है, और सिर्फ मैं बाकी रह गया हूँ। अब वे मुझे भी मारने की कोशिश कर रहे हैं। यहावे ने उन्हें आदेश दिया, दमिश्क के बंजर भूमि के मार्ग पर चले जाओ, वहां पहुंचकर आराम के राजपद के लिए अजायल का राजाभिषेक करना। इसराइल के राजपद के लिए निमशी के पुत्र येहू का राजाभिषेक करना और अपने स्थान पर भविष्यद्वक्ता होने के लिए आबेल मेहोला वासी शाफात के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना। तब जो कोई हजायल की तलवार से बच निकलेगा उसको येहू मार देगा, और जो कोई येहू की तलवार से बच निकलेगा उसके प्राण एलीशा ले लेगा। फिर भी इसराइल देश में मैं उन 7,000 व्यक्तियों को बचाकर रखूंगा जिन्होंने ना तो बाल के सामने घुटने टेके हैं और ना अपने होठों से उसका चुंबन ही लिया है। एलीशा का आह्वान। तब एलिया वहां से चल दिए, उन्हें शाफात के पुत्र एलीशा खेत में हल चलाते हुए मिले। हल में 12 जोड़े बैल जुते हुए थे और वह खुद 12वीं जोड़ी के साथ थे। एलीशा के पास से निकलते हुए एलिया ने अपना बाहरी कपड़ा उन पर डाल दिया। एलीशा अपने बैलों को वहीं छोड़ एलिया के पीछे दौड़े और उन्होंने एलिया से कहा, मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं अपने पिता और माता का चुंबन ले सकूं, तब लौटकर मैं आपका अनुसरण करूंगा। एलिया ने उससे कहा, जाओ, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा। एलीशा एलिया के पास से खेत में लौट गए, एक जोड़ी बैल लिए और उन्हें बलि के रूप में भेंट किया। उसके बाद जोते गए जुए को लेकर उससे उनके मांस को उबाला और उस मांस को लोगों में बांट दिया और उन्होंने भोजन किया। इसके बाद एलीशा एलिया का अनुसरण करने चला गया और एलिया के सेवक बन गया। राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 20। अहाब का आराम से युद्ध। आराम के राजा बेन हदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की, उनके साथ 32 राजा घोड़े और रथ थे। उसने शमरिया की घेराबंदी कर उससे युद्ध किया। इसके बाद उसने दूतों द्वारा नगर में इज़राइल के राजा अहाब को यह संदेश भेजा, यह बेन हदद का संदेश है, तुम्हारा सोना और चांदी मेरा है, तुम्हारी सबसे उत्तम पत्नियां और तुम्हारे बच्चे भी मेरे हैं। इज़राइल के राजा का उत्तर था, महाराज मेरे स्वामी, जैसा आप कह रहे हैं सही है, सब कुछ जो मेरा है आपका ही है और मैं खुद भी आपका हूँ। वे दूत दोबारा आए और उन्होंने यह संदेश दिया, यह बेन हदद का संदेश है, मैंने तुमसे कहा था मुझे अपना सोना चांदी पत्नियां और संतान दे दो, फिर भी कल लगभग इसी समय मैं अपने सेवक तुम्हारे यहाँ भेजूंगा, वे तुम्हारे घरों की और तुम्हारे सेवकों के घरों की छानबीन करेंगे और वह सब लेकर यहाँ आ जाएंगे जो तुम्हें प्यारा है। यह सुन इज़राइल के राजा ने देश के सारे पुरनियों की एक सभा बुलाई और उन्हें यह कहा, देख लीजिए कैसे यह व्यक्ति हमसे झगड़ा मोल ले रहा है। वह मुझसे मेरी पत्नियां और संतान और मेरा सोना और चांदी छीनने की योजना बना रहा है, मैंने यह अस्वीकार नहीं किया है। सारे पुरनियों और सभा के सदस्यों ने एक मत में कहा, ना तो उसकी सुनिए और ना ही उसे सहमति दीजिए। अहाब ने बेन हदद के दूतों से यह कहा, महाराज मेरे स्वामी से जाकर कहना, आपने अपने सेवक से पहले जो कुछ चाहा था वह मैं करूंगा, किंतु यह मैं नहीं कर सकता। दूत लौट गए और दोबारा आकर अहाब को यह संदेश दिया। उनके लिए बेन हदद का संदेश था, देवता मुझसे ऐसा बल्कि इससे भी अधिक बुरा व्यवहार करे। यदि शमरिया की धूल मेरे थोड़े से पीछे चलने वालों की मुट्ठी भरने के लिए भी काफी हो। इसराइल के राजा ने उसे उत्तर दिया, उससे जाकर कह दो, वह जो हथियार धारण करता है विजय होकर वह उतारने वाले के समान घमंड ना करे। बेन हदद दूसरे राजाओं के साथ छावनी में दाख मधु पीने में लगा था। जैसे ही उसने अहाब का संदेश सुना, उसने सैनिकों को आदेश दिया, चलो मोर्चे पर। इस पर उन्होंने नगर के विरुद्ध मोर्चा बांध लिया। अहाब बेन हदद को हराता है। एक भविष्यद्वक्ता इसराइल के राजा अहाब के सामने आ गए। उन्होंने राजा से कहा, यह यहावे का संदेश है, क्या तुमने इस बड़ी भीड़ को देखी है? यह देख लेना कि आज मैं इसे तुम्हारे अधीन कर दूंगा, तब तुम यह जान लोगे कि यहावे मैं ही हूं। अहाब ने भविष्यद्वक्ता से प्रश्न किया, कौन करेगा यह? भविष्यद्वक्ता ने उत्तर दिया, यहावे का संदेश यह है कि यह काम राज्यपाल ही करेंगे। तब अहाब ने प्रश्न किया, युद्ध की पहल कौन करेगा? भविष्यद्वक्ता ने उत्तर दिया, आप। अहाब ने राज्यपालों के सेवकों को इकट्ठा किया, कुल मिलाकर यह गिनती में 232 थे। उनके पीछे की पंक्तियों में 7,000 इजरायली सैनिक थे। इन्होंने दोपहर के समय कूच किया। इस समय बेन हदद 32 साथी राजाओं के साथ छावनी में बैठा हुआ दाख मधु के नशे में धुत था। राज्यपालों के सेवक सबसे आगे थे। बेन हदद ने भेद लेने के लिए भेदिए भेजे थे। उन्होंने लौटकर उसे यह सूचना दी, शमरिया से सेना निकल चुकी है। बेन हदद ने आदेश दिया, चाहे वे शांति के लक्ष्य से आ रहे हैं या युद्ध के लक्ष्य से, उन्हें जीवित ही पकड़ लेना। तब वे नगर से बाहर निकल पड़े, राज्यपालों के सेवक आगे आगे और उनके पीछे सेना। हर एक ने अपने अपने सामने के सैनिक को मार दिया। आरामी सेना के पैर उखड़ गए और इजरायली सेना ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया, मगर आराम का राजा बेन हदद अपने घोड़े पर घुड़सवारों के साथ भाग निकला। इसराइल के राजा ने पीछा करके घोड़ों और रथों को खत्म कर दिया। आरामी सेना हार गई और उसमें बड़ी मार काट हुई। तब वह भविष्यद्वक्ता इसराइल के राजा की उपस्थिति में जाकर कहने लगा, आप आइए और अपने आप को बलवंत करें, फिर सावधानी पूर्वक विचार कीजिए कि अब आपको क्या करना है, क्योंकि वसंत ऋतु में आराम का राजा आप पर हमला करेगा। आराम के राजा के मंत्रियों ने उससे कहा, उनके देवता पहाड़ियों के देवता हैं, यही कारण है कि वे हमसे अधिक शक्तिशाली साबित हुए हैं, मगर आइए हम उनसे मैदान में युद्ध करें, तब हम निश्चित ही उनसे अधिक मजबूत साबित होंगे। हम ऐसा करें, राजाओं को हटाकर सेनापतियों को उनकी जगहों पर खड़ा कर दें, और फिर हारी हुई सेना के समान घोड़े के लिए घोड़े और रथ के लिए रथ की सेना इकट्ठी करें, फिर हम उनसे मैदान में ही युद्ध करेंगे। निश्चित ही हम उनसे अधिक मजबूत साबित होंगे। राजा ने उनकी सलाह स्वीकार कर ली और वैसा ही किया भी। वसंत काल में बेन हदद ने आरामी सेना को इकट्ठा किया और इसराइल से युद्ध करने अफेक नगर की ओर बढ़ गया। इसराइली सैनिक भी इकट्ठे हुए। उन्होंने व्यूह रचना की और आरामियों का सामना करने के लिए आगे बढ़े। इजरायली सेना ने उनके सामने ऐसे डेरे खड़े किए कि वे भेड़ों के दो छोटे समूह समान दिखाई दे रहे थे, मगर आरामी सेना पूरी तरह से मैदान पर छा गई थी। परमेश्वर के एक दूत ने आकर इसराइल के राजा से कहा, यह संदेश यहावे की ओर से है, इसलिए कि आरामियों का यह मानना है, यहावे सिर्फ पहाड़ियों का परमेश्वर है मगर घाटियों मैदानों का नहीं। मैं इस पूरी भीड़ को तुम्हारे अधीन कर दूंगा,
और तुम यह जान जाओगे कि मैं ही यहावे हूँ। 7 दिन तक वे इसी स्थिति में एक दूसरे के आमने सामने डटे रहे। 7वें दिन युद्ध छिड़ गया। इजरायली सेना ने एक ही दिन में 1,00,000 अरामी पैदल सैनिकों को मार डाला। बाकी अफेक नगर को भाग गए। उनमें से बाकी 27,000 की मृत्यु उन पर दीवार के ढहने से हो गई। बेन हदद भी भागा और एक भीतरी कमरे में जाकर छिप गया। उसके सेवकों ने उससे कहा, सुनिए, हमने सुना है कि इज़राइल वंश के राजा कृपालु राजा होते हैं। हम ऐसा करें, हम कमर में टाट लपेट लेते हैं, अपने सिर पर रस्सियां डाल लेते हैं और इज़राइल के राजा की शरण में चले जाते हैं। संभव है वह आपको प्राण दान दे दे। तब उन्होंने अपनी कमर में टाट लपेट ली, सिर पर रस्सियां डाल ली और जाकर इज़राइल के राजा से कहा, आपके सेवक बेन हदद की विनती है, कृपया मुझे प्राण दान दे। अहाब ने उनसे पूछा, क्या वह अब तक जीवित है? वह तो मेरा भाई है। वहां बेन हदद के मंत्री सही इशारे का इंतजार कर रहे थे। इसे ही शुभ संकेत समझकर उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, जी हां, आपका ही भाई बेन हदद। राजा अहाब ने उन्हें आदेश दिया, जाओ उसे ले आओ। तब बेन हदद अहाब के सामने आया। अहाब ने उसे अपने रथ पर ऊपर बुलाया। बेन हदद ने अहाब को कहा, जो नगर मेरे पिता ने आपके पिता से छीने थे, मैं उन्हें लौटा दूंगा। आप अपनी सुविधा के लिए दमिश्क में अपने व्यापार के केंद्र बना सकते हैं, जैसा मेरे पिता ने शमरिया में किया था। अहाब ने बेन हदद से कहा, यदि तुम्हारी ओर से यही सुझाव है तो मैं तुम्हें मुक्त किए देता हूँ। तब उसने बेन हदद से संधि की और उसे मुक्त कर दिया। नबी द्वारा बेन हदद की मुक्ति का धिक्कार। यहावे के आदेश पर भविष्यद्वक्ता मंडल के एक भविष्यद्वक्ता ने अन्य सदस्य से विनती की, कृपा कर मुझ पर वार करो, मगर उसने यह विनती अस्वीकार कर दी। तब उस पहले ने दूसरे से कहा, इसलिए कि तुमने यहावे की आज्ञा तोड़ी है, यह देख लेना कि जैसे ही तुम यहां से बाहर जाओगे, एक शेर तुम्हें दबोच लेगा। हुआ भी यही, जैसे ही वह वहां से बाहर गया, एक सिंह ने उसे दबोच लिया और मार डाला। तब उसे एक दूसरा व्यक्ति मिला। उससे उसने विनती की, कृपया मुझ पर वार कीजिए। उस व्यक्ति ने उस पर वार किया और ऐसा वार किया कि वह भविष्यद्वक्ता चोटिल हो गया। तब वह भविष्यद्वक्ता वहां से चला गया और जाकर मार्ग में राजा का इंतजार करने लगा। उसने अपना रूप बदलने के उद्देश्य से अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। जैसे ही राजा वहां से गुजरा, उसने पुकार कर राजा से कहा, आपका सेवक युद्ध भूमि में गया हुआ था। वहां एक सैनिक ने एक व्यक्ति को मेरे पास लाकर कहा, इस व्यक्ति की रक्षा करना। यदि किसी कारण से मुझे लौटने पर यह यहां ना मिले, उसके प्राण के बदले में तुम्हारा प्राण लिया जाएगा। यदि यह नहीं तो तुम्हें उसके स्थान पर मुझे 35 किलो चांदी देनी होगी। मैं आपका सेवक जब अपने काम में जुट गया, वह व्यक्ति वहां से जा चुका था। इज़राइल के राजा ने उससे कहा, तुम्हारा न्याय तुम्हारे ही कथन के अनुसार किया जाएगा, तुमने खुद अपना निर्णय सुना दिया है। तब भविष्यद्वक्ता ने तुरंत अपनी आंखों पर से पट्टी हटा दी और इज़राइल का राजा तुरंत पहचान गया कि वह भविष्यद्वक्ता मंडल में से एक भविष्यद्वक्ता है। तब भविष्यद्वक्ता ने राजा से कहा, यह संदेश यहावे की ओर से है, जिस व्यक्ति को मैंने पूर्ण विनाश के लिए अलग किया था, तुमने उसे अपने अधिकार में आने के बाद भी मुक्त कर दिया है। अब उसके प्राणों के स्थान पर तुम्हारे प्राण ले लिए जाएंगे और उसकी प्रजा के स्थान पर तुम्हारी प्रजा। इज़राइल का राजा उदास और अप्रसन्न होकर शमरिया पहुंचा। राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 21। नाबोत की दाख की बारी के लिए अहाब का लोभ। येज़रील में शमरिया के राजा अहाब के राजघराने के पास येज़रील वासी नाबोत का एक दाख की बारी थी। इन घटनाओं के बाद अहाब ने नाबोत के सामने यह प्रस्ताव रखा, मुझे अपना दाख की बारी दे दो, मैं इसे अपने लिए साग पात का बगीचा बनाना चाहता हूँ, क्योंकि यह मेरे घर के पास है। इसकी जगह पर मैं तुम्हें इससे बेहतर अंगूर का बगीचा दे दूंगा
या अगर तुम्हें सही लगे तो मैं तुम्हें इसका पूरा दाम दे सकता हूँ। मगर नाबोत ने अहाब को उत्तर दिया, यहावे यह कभी ना होने दे कि मैं अपने पूर्वजों की मीरास आपको सौंप दूं। अहाब उदास और गुस्सा होता हुआ अपने घर को लौट गया, क्योंकि यज्रील वासी नाबोत ने उसे कहा था, मैं अपने पूर्वजों की मीरास आपको सौंप नहीं सकता। अहाब जाकर अपने बिछौने पर लेट गया, अपना मुंह फेर लिया और उसने भोजन भी ना किया। मगर उसकी पत्नी इजेबेल ने उसके पास आ उससे कहा, आपके मन में ऐसी कौन सी उदासी है कि आप भोजन तक नहीं कर रहे? राजा ने उसे उत्तर दिया, इसलिए कि मैंने यज्रील वासी नाबोत से बातें की है और उसके सामने यह प्रस्ताव रखा, अपनी दाख की बारी मुझे बेच दो, या तुम चाहो तो मैं तुम्हें इसकी जगह पर एक दूसरी दाख की बारी दिए देता हूँ। मगर उसने मुझे उत्तर दिया, मैं तुम्हें अपनी दाख की बारी नहीं दे सकता। उसकी पत्नी इजेबेल ने उत्तर दिया, क्या इसराइल के राजा आप नहीं है? उठिए, भोजन कीजिए कि आपके चेहरे पर चमक आ जाए। यज्रील वासी नाबोत की दाख की बारी आपको मैं दूंगी। इसके लिए इजेबेल ने अहाब के नाम में पत्र लिखे, उन पर अहाब की मोहर लगा, उन्हें नाबोत के नगर के पुरनियों और बड़े लोगों को भेज दिया। पत्रों में उसने लिखा था, उपवास की घोषणा करो और नाबोत को मुख्य स्थान पर बैठाना, नाबोत के ही सामने दो दुष्ट लोगों को भी बैठा देना। वे नाबोत पर यह आरोप लगाए, तुमने परमेश्वर और राजा को शाप दिया है, तब उसे ले जाकर पथराव द्वारा उसकी हत्या कर देना। नाबोत के नगरवासी पुरनियों और प्रमुखों ने ऐसा ही किया, जैसा इजेबेल ने उन्हें आदेश दिया था, ठीक जैसा आदेश उन्हें पत्रों में इजेबेल द्वारा दिया गया था। उन्होंने उपवास की घोषणा की और नाबोत को लोगों के बीच मुख्य स्थान पर बैठाया। दो दुष्टों ने आकर सबके सामने यह कहकर नाबोत पर आरोप लगाया, नाबोत ने परमेश्वर और राजा को शाप दिया है। तब वे नाबोत को नगर के बाहर ले गए और पथराव कर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने इजेबेल को यह सूचना भेज दी, नाबोत का पथराव किया जा चुका है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। जैसे ही इजेबेल को यह मालूम हुआ कि नाबोत का पथराव किया गया और उसकी मृत्यु हो चुकी है, इजेबेल ने अहाब से कहा, उठिए, यज्रील वासी नाबोत की दाख की बारी को अब अपने अधिकार में ले लीजिए। इस दाख की बारी के लिए वह आपसे इसका मूल्य भी स्वीकार करने के लिए तैयार ना था, अब वह जीवित नहीं मर चुका है। जैसे ही अहाब ने यह सुना कि नाबोत की मृत्यु हो चुकी है, अहाब उठकर यज्रील वासी नाबोत की दाख की बारी की ओर चल पड़ा कि उस पर अधिकार कर ले। तिशबे वासी एलिया को यहावे का यह संदेश भेजा गया, जाकर इसराइल के राजा अहाब से जो शमरिया में है भेंट करो, देखना इस समय वह नाबोत की दाख की बारी में है, जहां वह उस पर अधिकार करने के लिए गया हुआ है। तुम्हें उससे कहना, यह यहावे का संदेश है, तुमने हत्या की है और अब अधिकार भी कर लिया ना, फिर यह कहना होगा, यह यहावे का संदेश है, जहां कुत्तों ने नाबोत का लहू चाटा है, वहीं वे तुम्हारा लहू भी चाटेंगे। अहाब ने एलिया से कहा, मेरे शत्रु, तुम फिर मेरे सामने आ गए। एलिया ने उत्तर दिया, मुझे आना पड़ा, क्योंकि आपने अपने आप को उस काम के लिए समर्पित कर रखा है जो यहावे की दृष्टि में गलत है। यहावे कहते हैं, यह देखना मैं तुम पर बहुत विपत्ति बरसाऊंगा, मैं तुम्हें पूरी तरह भस्म कर दूंगा और मैं इसराइल में अहाब के परिवार से हर एक पुरुष को, बंधुआ हो या स्वतंत्र, मिटा दूंगा। मैं तुम्हारे परिवार को नेबात के पुत्र यरोबोआम के समान और अहिया के पुत्र बाशा के समान बना दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे क्रोध के लिए भड़काया और इसराइल को पाप की ओर उकसाया है। हाँ, इजेबेल के लिए भी यहावे का संदेश है, यज्रील नगर की सीमा के भीतर ही कुत्ते इजेबेल को खा जाएंगे। अहाब के किसी भी संबंधी की मृत्यु नगर में होगी, वह कुत्तों का भोजन हो जाएगा, और जिस किसी की मृत्यु नगर के बाहर खुले मैदान में होगी, वह आकाश के पक्षियों का भोजन हो जाएगा। निसंदेह ऐसा कोई भी ना हुआ जो यहावे के सामने बुराई के लिए अहाब के समान लगा रहा। अहाब, जिसे उसकी पत्नी इजेबेल उकसाती रहती थी, उसकी मूर्तियों की पूजा करना जैसा अमोरी किया करते थे, जिन्हें यहावे ने इसराइली प्रजा के सामने से निकाल दिया था, बहुत ही घृणित काम था। यह सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़ दिए और टाट लपेट लिया, उपवास किया, टाट पर ही सोने लगा और विलाप करते हुए ही अपना पूरा दिन गुजारने लगा। तिशबे एलिया के पास यहावे का यह संदेश पहुंचा, क्या तुमने देखा कि अहाब मेरे सामने कैसा विनम्र हो गया है? उसकी इस विनम्रता के कारण मैं यह विपत्ति उसके जीवन काल में नहीं बल्कि उसके पुत्र के शासन काल में ही उसके परिवार पर डालूंगा।
राजाओं की पहली पुस्तक अध्याय 22।
अहाब और मीकाया नबी। 3 साल तक इसराइल और अराम के बीच युद्ध ना हुआ। 3रे साल यहूदिया का राजा यहोशाफात इसराइल के राजा अहाब से भेंट करने आया। इसराइल के राजा ने अपने सेवकों से कहा, क्या तुम्हें मालूम है कि रामोत गिलाद हमारे अधिकार क्षेत्र में है और हम इसे अराम के राजा से दोबारा पाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं? तब उसने यहोशाफात से प्रश्न किया, क्या आप रामोत गिलाद में युद्ध करने मेरे साथ चलेंगे? यहोशाफात ने इसराइल के राजा को उत्तर दिया, मैं आपके ही जैसा हूँ, मेरी प्रजा आपकी प्रजा के समान और घोड़े आपके घोड़ों के समान। यहोशाफात ने इसराइल के राजा से कहा, सबसे पहले यहावे की इच्छा मालूम कर ले। तब इसराइल के राजा ने भविष्यवक्ताओं को इकट्ठा किया, ये लगभग 400 व्यक्ति थे। उसने भविष्यवक्ताओं से प्रश्न किया, मैं रामोत गिलाद से युद्ध करने जाऊं या यह विचार छोड़ दूं? उन्होंने उत्तर दिया, आप जाइए, क्योंकि यहावे उसे राजा के अधीन कर देंगे। मगर यहोशाफात ने प्रश्न किया, क्या यहाँ यहावे का कोई भविष्यद्वक्ता नहीं जिससे हम यह मालूम कर सकें? इसराइल के राजा ने यहोशाफात को उत्तर दिया, हाँ, यहाँ एक और व्यक्ति है जिससे हम यहावे की इच्छा जान सकते हैं, इमला का पुत्र मीकाया, मगर मुझे उससे घृणा है क्योंकि उसकी भविष्यवाणी में मेरे लिए कुछ भी भला नहीं बल्कि बुरा ही हुआ करता है। इस पर यहोशाफात ने कहा, राजा का ऐसा कहना अच्छा नहीं है। तब इसराइल के राजा ने अपने एक अधिकारी को बुलाकर आदेश दिया, जल्द ही इमला के पुत्र मीकाया को ले आओ। इसराइल का राजा और यहूदिया के राजा यहोशाफात शमरिया के फाटक के सामने खुले खलियान में राजसी वस्त्रों में अपने अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनके सामने सारे भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी कर रहे थे। तभी केनाना का पुत्र सिदकियाहू, जिसने अपने लिए लोहे के सींग बनवाए थे, कहने लगा, यह संदेश यहावे की ओर से है, इन सींगों के द्वारा आप अरामियों पर इस रीति से वार करेंगे कि वे खत्म हो जाएंगे। सारे भविष्यद्वक्ता यही भविष्यवाणी कर रहे थे, रामोत गिलाद पर हमला कीजिए और विजयी हो जाइए, यहावे इसे राजा के अधीन कर देंगे। उस दूत ने, जो मीकाया को लाने के लिए भेजा गया था, मीकाया से कहा, देख लो, सारे भविष्यद्वक्ता राजा के लिए अनुसार और भलाई में ही भविष्यवाणी कर रहे हैं, तुम्हारी भविष्यवाणी भी इन्हीं में से एक के समान हो, तुम भी भली भविष्यवाणी ही करना। मगर मीकाया ने कहा, जीवित यहावे की शपथ, मैं सिर्फ वही कहूंगा जिसके लिए यहावे मुझे भेजेंगे। जब मीकाया राजा के सामने पहुंचा, राजा ने उससे प्रश्न किया, मीकाया, क्या हम रामोत गिलाद से युद्ध करें या इसका विचार ही छोड़ दें? मीकाया ने राजा को उत्तर दिया, आप जाइए और सफलता प्राप्त कीजिए, यहावे इसे राजा के अधीन कर देंगे। राजा ने मीकाया से कहा, मीकाया, मुझे तुम्हें कितनी बार इसकी शपथ दिलानी होगी कि तुम्हें मुझसे यहावे के नाम में सच के सिवाय और कुछ भी नहीं कहना है? तब मीकाया ने उत्तर दिया, मैंने सारे इसराइल को बिन चरवाहे की भेड़ों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देखा, तभी यहावे ने कहा, इनका तो कोई स्वामी ही नहीं है, हर एक को शांतिपूर्वक अपने अपने घर लौट जाने दो। इसराइल के राजा ने यहोशाफात से कहा, मैंने कहा था ना कि यह मेरे बारे में बुरी भविष्यवाणी ही करेगा, भली नहीं। इस पर मीकाया ने उत्तर दिया, बहुत बढ़िया, तो फिर यहावे का संदेश भी सुन लीजिए। मैंने यहावे को उनके सिंहासन पर बैठे देखा, उनके दाईं ओर बाईं ओर में सारी स्वर्गिक सेना खड़ी हुई थी। यहावे ने वहां प्रश्न किया, यहां कौन है जो अहाब को ऐसे लुभाएगा कि वह रामोत गिलाद जाए और वहां जाकर मारा जाए। किसी ने वहां कुछ उत्तर दिया और किसी ने कुछ और। तब वहां एक आत्मा आकर यहावे के सामने खड़े होकर यह कहने लगा, मैं उसे लुभाऊंगा। कैसे? यहावे ने उससे प्रश्न किया। उसने उत्तर दिया, मैं जाकर राजा के सभी भविष्यवक्ताओं के मुख में झूठी आत्मा बन जाऊंगी। इस पर यहावे ने कहा, तुम्हें इसमें सफल भी होना होगा, जाओ और यही करो। इसलिए देख लीजिए, यहावे ने इन सारे भविष्यवक्ताओं के मुंह में छल का एक आत्मा डाल रखा है। आपके लिए यहावे ने सर्वनाश की घोषणा कर दी है। यह सुन केनाना का पुत्र सिदकियाहू सामने आया और मिखाया के गाल पर मारते हुए कहने लगा, यहावे का आत्मा मुझमें से निकलकर तुमसे बातचीत करने किस प्रकार जा पहुंचा? मिखाया ने उसे उत्तर दिया, तुम यह देख लेना, जब उस दिन तुम छिपने के लिए भीतर के कमरे में शरण लोगे, इज़राइल के राजा ने कहा, पकड़ लो मिखाया को, उसे हाकिम अमोन और राजकुमार योआश के पास ले जाओ। उनसे कहना, यह राजा का आदेश है, इस व्यक्ति को जेल में डाल दो और उसे उस समय तक जरा सा ही भोजन और पानी देना जब तक मैं सुरक्षित ना लौट आऊं। इस पर मिखाया ने कहा, यदि आप सच में सकुशल लौट आए तो यह समझ लीजिए कि यहावे ने मेरे द्वारा यह सब प्रकट किया ही नहीं है। और फिर भीड़ से उसने कहा, आप सब भी यह सुन लीजिए, रामोत अहाब की हार और मृत्यु। फिर भी इज़राइल के राजा और यहूदिया के राजा यहोशाफात ने रामोत गिलाद पर हमला कर दिया। इज़राइल के राजा ने यहोशाफात से कहा, मैं भेष बदलकर युद्ध भूमि में जाऊंगा, मगर आप अपनी राजसी वेशभूषा ही पहने रहिए। इज़राइल का राजा भेष बदलकर युद्ध भूमि में गया। आराम के राजा ने अपनी रथ सेना के 32 प्रधानों को आदेश दे रखा था, युद्ध ना तो साधारण सैनिकों से करना और ना मुख्य अधिकारियों से, सिर्फ इज़राइल के राजा को निशाना बनाना। जैसे ही इन अधिकारियों ने यहोशाफात को देखा, उन्होंने समझा, जरूर यही इज़राइल का राजा है। तब वे यहोशाफात की ओर लपके। इस पर यहोशाफात चिल्ला उठा। जब प्रधानों ने देखा कि वह इज़राइल का राजा नहीं था, उन्होंने उसका पीछा करना छोड़ दिया। इसी समय किसी एक सैनिक ने बिना कोई निशाना साधे ही अपना बाण छोड़ दिया। वह बाण जाकर इज़राइल के राजा के कवच के जोड़ पर जा लगा। तब राजा ने सारथी को आदेश दिया, रथ मोड़ो और मुझे युद्ध भूमि से बाहर ले चलो, मैं बुरी तरह से जख्मी हो गया हूँ। युद्ध तेज होता चला गया। आरामियों के सामने राजा को रथ में खड़ा हुआ पेश किया गया। शाम को राजा के प्राण पखेरु उड़ गए, उसका खून बहता हुआ रथ के पेंदे में जमा होता रहा। शाम को सारी सेना में यह घोषणा की गई, हर एक व्यक्ति अपने अपने नगर को और हर एक सैनिक अपने अपने देश को लौट जाए। राजा के शव को शमरिया लाया गया और उसे शमरिया में गाड़ दिया गया। रथ को शमरिया के तालाब के तट पर धोया गया और उस खून को कुत्ते चाटते रहे। इस समय वह जगह वैश्याओं के नहाने के लिए ठहराया हुआ घाट था। यह ठीक वैसा ही हुआ जैसी यहावे की भविष्यवाणी थी। अहाब द्वारा किए गए बाकी काम और वह सब जो उसके द्वारा किया गया, उसके द्वारा बनाया गया हाथी दांत का भवन और उसके द्वारा बनाए नगरों का ब्यौरा इज़राइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में दिया गया है। अहाब अपने पूर्वजों के साथ हमेशा के लिए जा मिला और उसकी जगह पर उसका पुत्र अहाज़िया राजा बना। यहूदिया पर यहोशाफात का शासन। इज़राइल के राजा अहाब के शासनकाल के चौथे साल में आसा के पुत्र यहोशाफात ने यहूदिया पर शासन करना शुरू किया। जब उसने शासन की बागडोर संभाली, उसकी उम्र 35 साल की थी। उन्होंने यरूशलेम में 25 साल शासन किया। उसकी माता का नाम अत्सूबा था, वह शीली की पुत्री थी। यहोशाफात का व्यवहार सभी बातों में उनके पिता आसा के समान था। वह कभी उस तरह के जीवन से अलग ना हुआ। उसके काम वे ही थे जो यहावे की दृष्टि में सही थे। फिर भी पूजा स्थलों की वेदियां तोड़ी नहीं गई थी। लोग पूजा स्थलों की वेदियों पर धूप जलाते और बलि चढ़ाते रहे। इनके अलावा यहोशाफात ने इज़राइल के राजा के साथ शांति की वाचा बांधी। यहोशाफात की बाकी उपलब्धियां, उसके द्वारा किए गए वीरता के काम और उसके युद्ध कौशल का ब्यौरा यहूदिया के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में किया गया है। उसने अपने पिता आसा के शासनकाल से बाकी रह गए अन्य देवताओं के मंदिर में काम कर रहे पुरुष वैश्याओं को निकाल दिया। एदोम देश में कोई राजा ना था, वहां सिर्फ राजा द्वारा एक दूत चुना गया था। यहोशाफात ने दोबारा ओफीर से सोना आयात करने के लिए तर्शीश के समान जहाज बनाए, मगर वे यात्रा पर जा ही ना सके क्योंकि वे एजियोन गेबेर नामक स्थान पर ही टूट गए। अहाब के पुत्र अहज्या ने यहोशाफात के सामने प्रस्ताव रखा, जहाजों में अपने सेवकों के साथ मेरे सेवकों को भी ले लीजिए, मगर यहोशाफात इसके लिए राजी ना हुआ। यहोशाफात हमेशा के लिए अपने पूर्वजों में मिल गया। उसे उसके पूर्वज दाविद के नगर में उसके पूर्वजों के साथ गाड़ा दिया। उसके स्थान पर उसका पुत्र यहोराम राजा हुआ। इसराइल पर अहज्या का शासन। यहूदिया के राजा यहोशाफात के शासनकाल के 17वें साल में अहाब के पुत्र अहज्या ने शासन करना शुरू किया। उसने वह किया जो यहावे की दृष्टि में गलत है। उसका स्वभाव अपने पिता और माता और नेबात के पुत्र यरोबोआम के समान था, जिन्होंने इसराइल को पाप के लिए उकसाया था। वह बाल की सेवा उपासना करता था, जिसके द्वारा उसने यहावे इसराइल के परमेश्वर के क्रोध को भड़काया, ठीक वही सब जैसा उसके पिता ने किया था।